षष्ठ अध्याय हिंदी साहित्य का भक्ति काल आमुख। वैष्णव भक्ति के चतुर्थ युग में भारत स्वाधीन था। स्वाधीन वातावरण में जिस दर्शन और ललित कला की अभिव्यक्ति संभव होती है वह इस युग में सुचारू रूप से संपन्न हुई। पुराणों तथा पांचरात्र संहिताओं के अभिनव संस्करण एवं निर्माण का उल्लेख हम पीछे कर चुके हैं। कवि कुल गुरु कालिदास, भवभूति, बाण आदि की अमर रचनाएं भी इसी युग में लिखी गयी। चित्रकला भी इस युग में अपने यौवन पर थी। भव्य भवनों, देवालयों तथा देव विग्रहों का निर्माण स्थापत्य एवं तक्षण कलाओं के उदात्त उदाहरण प्रस्तुत करता है। राजनैतिक दृष्टि से भारत ने बृहत्तर भारत का रूप इसी युग में धारण किया। चीन, ब्रह्म, स्वर्ण देश, श्याम, बाली आदि देशों के साथ पूर्व में तथा पख्तन, ईरान, अरब, यूनान, तुर्किस्तान आदि देशों के साथ पश्चिम में हमारा राजनैतिक, धार्मिक एवं व्यापारिक संबंध था। बाहर जाकर हमने अनेक उपनिवेश बसाए। इस सांस्कृतिक प्रसार में भागवत भक्ति का प्रभाव विशेष रूप से क्रियाशील था। वैष्णव भक्ति के पंचम युग में पासा पलट चुका था। देश के ऊपर अनेक बर्बर जातियों के आक्रमण हुए। जहां हम दिग दिगंत तक फैले हुए थे वहां नियति के वशीभूत हो अपने तक भी सीमित न रह सके। विदेशियों ने अपने अमानुष आतंक द्वारा हमें झकझोर डाला। आपदाओं की जो कूर दृष्टि इस युग में हम पर पड़ी उसे हम ही थे जो सहन कर गए। अन्यथा ऐसी विकट परिस्थितियों में अनेक ऐतिहासिक जातियां समूल उन्मूलित होते देखी गई है। वैष्णव भक्ति ने हमें संभाला। हम पराधीन तो हो गए पर अपने स्वरूप संरक्षण में पराधीन होकर भी दत्तचित्त रहे। वैष्णव भक्ति के पंचम युग का रूप इसी पराधीनता जन्य परिस्थिति की प्रतिक्रिया का परिणाम है। बाह्य परिस्थिति। भारतीय स्वाधीनता का सूर्य दिल्ली और अजमेर के चौहान सम्राट महाराज पृथ्वीराज के मृत्यु के साथ ही अस्ताचलगामी हुआ। कन्नौज के अधिपति महाराज जयचंद ने जीवित गंगा लाभ कर अपने पापों का प्रायश्चित किया। इन दो महाशक्तियों के ऊपर उठ जाने से उत्तराखंड में यमुना क्रमण प्रतिरोधिनी कोई प्रबल शक्ति न रह गई। मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारियों को एकदम निष्कंटक तो नहीं पर बहुत कुछ विघ्न बाधा विहीन वातावरण प्राप्त हो गया। दिल्ली दुर्ग पर पठानों की विजयनी पताका फहराने लगी। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी इन पांच मुस्लिम वंशों ने 1206 से 1526 ईस्वी तक उत्तराखंड का शासन किया। इस शासन का वर्णन जिन ऐतिहासिकों ने किया है उनके अनुसार यह शासन हिंदुओं पर मुसलमानों के घोर अन्याय एवं अत्याचार का शासन था। हिंदुओं को बलात् मुसलमान बनाना, मुसलमान न बनने पर उन्हें जजिया कर देने के लिए बाध्य करना, किसानों से खेतों की उपज का आधे से अधिक भाग भूमि कर के रूप में ले लेना, उत्तरदायित्व पूर्ण पदों पर केवल मुसलमानों को रखना, हिंदुओं के लिए अश्वारोहण, सुंदर वस्त्र धारण, तांबूल भक्षण तथा अस्त्र शस्त्र आदि रखने की निषेधाज्ञा का प्रचारित करना, देवालयों के अभिनव निर्माण से उन्हें वंचित रखना, जीर्णोद्धार की आज्ञा न देना, मंदिरों को मस्जिदों में परिणत करना, मंदिरों पर खुदे हुए शिलालेखों, प्रशस्तियों तथा अंदर रखे हुए ग्रंथों को नष्ट करना, मंदिरों के उपादान से मस्जिदों का निर्माण करना, यवन निर्माण की शिल्प पद्धति में परिवर्तन करना, हिंदुओं को सोने और चांदी के आभूषण तो जहां तहां तांबे और पीतल के बर्तन रखने से भी वंचित कर देना आदि ऐसी अनेक बातें हैं जो हिंदुओं को धर्मांतरित करने, वशीभूत करने अथवा नष्ट करने तथा मुस्लिम राज्य एवं धर्म को सुदृढ़ बनाने के लिए की गयी। इन्हें एक संस्कृत जाति पर असंस्कृत आक्रांताओं के अत्याचारों की मर्मभेदी कहानी छिपी हुई है। आर्य जाति ने अपने जीवन में पहली बार इस प्रकार की परिस्थिति का सामना किया। विदेशियों के आक्रमण इस भारत वसुंधरा पर इसके पूर्व भी हुए थे पर उनका प्रभाव क्षण स्थायी था। सिकंदर का आक्रमण कितने दिन टिक सका? उसके उत्तराधिकारी सिल्यूकस को अपनी पुत्री की भेंट सम्राट चंद्रगुप्त को पत्नी के रूप में देकर अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी थी। दुर्दांत शकों, कुषाणों और हूणों के आक्रमणों का भी कोई स्थायी प्रभाव इस देश के निवासियों पर नहीं पड़ा। हमारी संस्कृति की उदारता तथा उदारता ने इन सब आक्रांताओं को जो यहीं आकर बस गए अपने अंदर पचा लिया। पर मुसलमानों के आक्रमण दूसरे प्रकार के थे। इनके एक हाथ में तलवार तथा दूसरे हाथ में कुरान चलती थी। या तो कुरान को मानकर कलमे को पढ़कर मुसलमान हो जाओ, अन्यथा तलवार का सामना करो। अनेक देश तलवार के वार के सामने झुककर इस्लाम के झंडे के नीचे आ गए पर भारत ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसने मुसलमानों की तलवार का जवाब तलवार से दिया। उनके शासन के प्रतिष्ठित हो जाने पर भी उन्हें म्लेच्छ कहकर अपमानित किया तथा उनके साथ सभी प्रकार का सामाजिक संबंध विच्छेद रखा और पूर्णतया असहयोग किया। हिंदुओं के जिन व्यक्तियों, वंशों तथा जातियों ने मुसलमानों और उनके शासकों के साथ सहयोग किया उन्हें निंदित समझा गया तथा सामाजिक आचार व्यवहार की दृष्टि से हीन कोटि में फेंक दिया गया। हिंदू जाति ने इस विकट परिस्थिति का सामना प्राणपण से किया और कुछ वर्गों में अपने को विभाजित करके इन वर्गों को सुदृढ़ दुर्ग बना दिया। इन दुर्गों ने उसकी सामाजिक रक्षा की। राजनैतिक दृष्टि से उसका क्षत्रिय वर्ग अनवरत रूप से मुस्लिम सेना के साथ लोहा लेता रहा। पठानों का 300 वर्षों का राज्य उनके लिए सुखोपभोग का समय नहीं था। उन्हें आए दिन राजपूत वीरों से युद्ध करना पड़ता था। इन 300 वर्षों में दिल्ली का सिंहासन सतत डावाडोल रहा। दैव का दुर्विपाक। पठानों के राज्य को तहस नहस कर देने वाले बाबर ने जब उदयपुर के राणा सांगा को सीकरी के मैदान में पराजित कर दिया तो हिंदुओं की स्वाधीनता का जो सूर्य चमकने ही वाला था पुनः अस्त हो गया। सूरी वंश के अल्पकालीन राज्य के उपरांत बाबर के वंशधर मुगलों का प्रतापी साम्राज्य पुनः इस देश के ऊपर स्थापित हो गया। अकबर मुगलों का अत्यंत दूरदर्शी सम्राट था। उसने हिंदू राजाओं को अपनी ओर मिलाया। पठानों की नीति के विपरीत उन्हें उत्तरदायित्व पूर्ण पद प्रदान किए और उनके साथ रक्त संबंध भी स्थापित किया। गोवध निषेध की आज्ञा द्वारा उसने हिंदुओं के हृदय में भी घर कर लिया। फिर भी मुगलों का राज्य 1556 से 1707 तक ही अपने ओज के साथ चमक सका। इसके पूर्व से ही औरंगजेब की कट्टरता के विरोध में मुगल विघटनकारिणी शक्तियां मराठे, राजपूत और सिखों के रूप में क्रियाशील थी और उनका कार्य सफलता की सीमा का स्पर्श भी करने लगा था। राजपूत राजा लगभग स्वतंत्र हो गए थे और मराठों की हिंदू पद पादशाही दक्षिण से उत्तर तक अपना आतंक जमाए हुए थी। यह कार्य क्या कोरी राजनैतिक शक्ति द्वारा संपन्न हो सका था? नहीं, इसके मूल में प्रबल धार्मिक आंदोलन भी कार्य कर रहे थे। आइए थोड़ी देर के लिए इन धार्मिक आंदोलनों की गतिविधि पर भी विचार कर लें। धार्मिक आंदोलन। मुसलमानों की क्रूरता से आक्रांत, शांति एवं व्यवस्था के अभाव से विपन्न तथा न्याय धर्म वंचित धर्म प्रवण भारत के उत्तराखंड में उन दिनों जो धार्मिक आंदोलन चले उनमें स्वामी रामानंद तथा आचार्य वल्लभ का विशेष हाथ था। स्वामी रामानंद आचार्य रामानुज के शिष्य परंपरा में उत्पन्न महात्मा राघवाचार्य के शिष्य थे। राघवाचार्य ने दक्षिण से उत्तर में आकर काशी में स्थायी रूप से निवास किया। इन्हें राम मंत्र का प्रचारक कहा जाता है। इनकी साधना में योग और भक्ति दोनों का समन्वय था। पंडित बलदेव जी उपाध्याय ने अपने ग्रंथ भागवत संप्रदाय के पृष्ठ 125 पर इनके एक हस्तलिखित हिंदी ग्रंथ सिद्धांत तन्मात्रा की चर्चा की है जो काशी नागरी प्रचारणी सभा के हस्तलिखित संग्रह में सुरक्षित है। इस लघुकाय पुस्तिका का मूल पाठ डॉक्टर बड़तवाल के योग प्रवाह में पृष्ठ 18 से 22 तक प्रकाशित हो चुका है। इसमें हठ योग, सगुरा, निगुरा, द्वादशाक्षर, वैष्णव मंत्र, तिलक, तुलसी माला आदि का उल्लेख पाया जाता है। स्वामी रामानंद ने अपने ग्रंथ रामार्जन पद्धति में जो गुरु परंपरा दी है उसके अनुसार राघवाचार्य जी आचार्य रामानुज से 13वीं पीढ़ी में पढ़ते हैं। स्वामी रामानंद महात्मा कबीर के गुरु रूप में 15वीं शताब्दी के अंत में विद्यमान थे। यह समय इन पीढ़ियों की वर्ष गणना के हिसाब से भी सही सिद्ध होता है। स्वामी रामानंद सिद्धांतता आचार्य रामानुज के मत के ही अनुयायी हैं और उनके ग्रंथ वैष्णव मताब्ध भास्कर में विशिष्टाद्वैत संप्रदाय के सिद्धांत ही स्वीकृत हुए हैं। फिर भी द्वादशाक्षर मंत्र के स्थान पर षडक्षर मंत्र के प्रचार द्वारा इन्होंने एक नवीन संप्रदाय की नींव डाली जिसे वैरागी अथवा रामानंदी संप्रदाय कहा जाता है। भक्ति के क्षेत्र में संप्रदाय ने सब वर्णों को एक धरातल पर खड़ा कर दिया। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। यह अर्धाली इसी तथ्य पर प्रकाश डालती है। स्वामी रामानंद के शिष्यों में भी कबीर, जुलाहा, सेना, नाई तथा रैदास चमार, एक ओर धन्ना जाट तथा राजपुताना के महाजन पीपा जी, दूसरी ओर ससुर सुरानंद, सुखानंद, भावानंद आदि तीसरी ओर दिखाई देते हैं। नाभादास ने भक्तमाल में स्वामी रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन किया है जिनके नाम इस प्रकार हैं: अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहर्यानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धना, रैदास, पद्मावती और सुरसुरी। श्री रूप कला जी ने भक्ति सुधा बिंदु स्वाद में रहस्य त्रयी के टीकाकार के मतानुसार स्वामी रामानंद के 13 शिष्यों के नाम लिखे हैं जिनमें सुरसुरी का नाम नहीं है। रैदास को रामदास लिखा गया है तथा योगानंद और गालवानंद के 2 नाम अधिक हैं। काशीवासी मौलाना रशीदुद्दीन ने जो स्वामी रामानंद के समकालीन एवं एक उच्च कोटि के फकीर थे अपने ग्रंथ तस्कीर तुल फुकरा में स्वामी रामानंद के शिष्यों की संख्या 500 से भी अधिक लिखी है पर उनमें से द्वादश शिष्यों को गुरु का विशेष कृपा पात्र माना है जिनमें कबीर, पीपा और अदास की भी गणना है। इन शिष्यों में से कबीर ने स्वतंत्र कबीर पंथ की स्थापना की। रैदास का रैदासी संप्रदाय भी अभी तक चला आता है और रैदास को रमादास से रविदास बनाकर उनकी जयंती भी मनाई जाने लगी है। वैरागी संतों के मुख से स्वामी रामानंद के संबंध में अनेक चमत्कार पूर्ण किंवदंतियां सुनने को मिलती हैं। एक संत का कथन है कि जब सिकंदर लोदी, यह बादशाह सिकंदर लोदी नहीं हो सकता क्योंकि उसका राज्य काल स्वामी रामानंद के निधन संवत 1467 विक्रम के बाद पड़ता है। इस समय महमूद तुगलक राज्य करता था। इसी के राज्यकाल में 1398-1455 विक्रम में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, जिसमें अनेक हिंदू बेमौत मारे गए थे। तैमूर कट्टर मुसलमान था के अत्याचारों से हिंदू जनता क्लेश पाने लगी तो सब मिलकर स्वामी रामानंद के पास पहुँचे। स्वामी जी उनके ऊपर होने वाले अमानवीय अत्याचारों की कहानी सुनकर भीतर ही भीतर अत्यंत दुखी हुए और उन सब से भगवान की आराधना करने के लिए कहा। दूसरे दिन शुक्रवार पड़ता था। प्रातः वेला में जैसे ही अजान देने वाला मस्जिद में अजान देने के लिए गया, उसका कंठ अकस्मात अवरुद्ध हो गया और वह अजान न दे सका। अन्य मुल्ला और मौलवियों के कंठ भी बंद हो गए। इस विचित्र घटना से मुसलमानों के अंदर तहलका मच गया। वे सब सिकंदर लोदी के पास गए और घटना को ज्यों का त्यों कहकर सुना दिया। सुल्तान ने शेख तकी को बुलाया। शेख तकी ने कहा, यह सब स्वामी रामानंद की करामात प्रतीत होती है। सुल्तान ने विविध प्रकार के उपहारों के साथ वजीर और उलेमाओं को स्वामी रामानंद के पास भेजा। स्वामी जी ने उपहार की सामग्री संतों और फकीरों में बंटवा दी और कहा, जाओ सुल्तान से निवेदन करो कि उसे हिंदू और मुसलमान का भेद करके प्रजा का शासन नहीं करना चाहिए। बादशाह के लिए उसकी सारी प्रजा एक समान है। हिंदुओं पर जजिया कर लगाना अवैध है। मंदिरों का विध्वंस, मस्जिद के सामने हिंदू वर्ग को पालकी से उतरवाना, गोवध, शंख बजाने तथा पर्व मनाने का निषेध आदि बातें अन्याय है। इस अन्याय को हटाओ। सिकंदर लोदी को यह सब सुनाया गया और उसने इन सब अन्यायपरक बातों को हटाने तथा न्यायपूर्वक शासन करने का आश्वासन दिया। तब कई मुल्लाओं के कंठ खुले और वे नमाज पढ़ सके। पंडित बलदेव जी उपाध्याय ने भागवत संप्रदाय के पृष्ठ 302 और 303 पर इसी प्रकार की एक कहानी प्रसंग पारिजात से उद्धृत की है, जिसमें तैमूर हत्याकांड का भी उल्लेख है। इस किंवदंती में कितना सत्य है कहा नहीं जा सकता, पर इससे स्वामी रामानंद के योगी होने की बात अवश्य सिद्ध होती है। यह भी ज्ञात होता है कि मुसलमान शासक हिंदू प्रजा पर उन दिनों अनेक प्रकार के अत्याचार करते रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि स्वामी रामानंद ने गिरनार पर्वत पर 12 वर्ष तक योग साधना की थी। स्वामी रामानंद के मतानुसार राम ईश्वर है, लक्ष्मण जीव है और सीता प्रकृति है। इसी तत्व त्रय की तीन मूर्तियाँ रामानंदी मंदिरों में स्थापित होती रही है। बाद में राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी के अनुकरण पर सीता और राम की मूर्तियों की प्रतिष्ठा मंदिरों में होने लगी। वैष्णव मताग्र भास्कर में राम भक्ति विषयक पीछे लिखा श्लोक मिलता है, सा तैल धारा समन्वित संस्मृति ही संतान रूपेशी परानुरक्ति ही भक्तिर विवेकाधिक सप्त जन्या तथा यमाद्यष्ट सुबोध कांगा। अर्थात तेल की अविच्छिन्न धारा के समान राम का नित्य अनुराग सहित स्मरण ही भक्ति है। इस भक्ति के सात उपाय हैं, विवेक, दूषित एवं वर्जित आहार से सात्विक आहार का विश्लेषण करना, विमोक, कामना से उपरति विषय विकारों से चित्त को पृथक रखना, आभास, जगत के उत्पादक राम का अनवरत ध्यान, क्रिया, पंच महायज्ञों का सतत अनुष्ठान, कल्याण, सत्य, सरलता, दया, दान आदि का संपादन, अनवसाद, विषाद या दुख का बिना अनुभव किए प्रसन्नता पूर्वक भगवत भक्ति के पथ पर प्रयाण करना, अनुद्धर्ष, हर्षोत्पादक पार्थिव पदार्थों तथा पारिवारिक संबंधों से हट जाना, यम नियमादि योग के अष्टांगों के सेवन द्वारा अपने अंदर भगवत भक्ति को दृढ़ करते रहना चाहिए। स्वामी रामानंद ने वैष्णव मताब्ध भास्कर के श्लोक संख्या 179 और 180 में राम को परमेश्वर माना है और उनके गुणों का वर्णन उपनिषदों में प्रतिपादित ब्रह्म के गुणों के आधार पर किया है। उन्होंने गुरु की आवश्यकता को भी स्वीकार किया है क्योंकि गुरु ही शिष्य के संशयों का उच्छेद कर सकता है। अयोध्यापुरी उनके मत में वैकुंठ रूपा है, जिसमें वही साधक प्रवेश कर सकता है जो प्रकृति मंडल के सीमा रूप गिरजा नाम की नदी में स्नान करके उसे उत्तीर्ण कर चुका है। भगवान की अहैतुकी दया जिस पर हो जाए वही उनके दर्शन कर सकता है। आचार्य रामानुज के श्री वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी लक्ष्मी नारायण को अपना आराध्य देव मानते हैं, परंतु स्वामी रामानंद के वैरागी संप्रदाय के अनुयायी सीता राम को अपना आराध्य देव स्वीकार करते हैं। अध्यात्म रामायण का विशेष प्रचार रामानंदी संप्रदाय के ही अंतर्गत है। उसका निम्नांकित श्लोक जानकी राम की वंदना में लिखा गया है, यह पृथ्वी भरवारणाय दिविजय संप्रार्थितः चिन्मयः संजातः पृथ्वी तले रविकुले माया मनुष्यो व्ययः निश्चक्रम हतराक्षसः पुनरगात ब्रह्मत्वमाद्यं स्थिरां कीर्तिं पापहरां विधाय जगतां तं जानकीशं भजे। इस श्लोक में राम को चिन्मय अव्यक्त ब्रह्म का अवतार माना गया है, जो राक्षसों का विनाश तथा संसार में अपनी कीर्ति का विस्तार करने के उपरांत अपने आद्य ब्रह्म रूप को पुनः प्राप्त हो गया है। श्री वैष्णव संप्रदाय वाले विधि विधानों के बाहुल्य वर्णाश्रम मर्यादा के पालन तथा संस्कृत के प्रयोग पर अधिक बल देते थे। स्वामी रामानंद ने समय की आवश्यकता के अनुकूल इन विधानों में परिवर्तन कर दिया। उन्होंने पूजा संबंधी विविध अनुष्ठानों के स्थान पर इष्ट देव के भजन का प्रचार किया, संस्कृत के स्थान पर हिंदी आदि लोक भाषाओं की प्रतिष्ठा की और भक्ति क्षेत्र में वर्णाश्रम मर्यादा को हटाकर प्रभु प्राप्ति का क्षेत्र सबके लिए उन्मुक्त कर दिया। स्वामी रामानंद ने इस संबंध में ब्राह्मण और शूद्र के ही भेद को नहीं हिंदू और मुसलमान के भेद को भी मिटा दिया। जिस व्यक्ति ने संप्रदाय में दीक्षा ले ली और राम भक्ति को स्वीकार कर लिया, वह संप्रदाय के सभी प्रकार के व्यक्तियों के साथ बैठकर खा सकता था। राधा और कृष्ण के स्थान पर सीता और राम की भक्ति के प्रचार ने समाज को पवित्र मर्यादा मार्ग कर्तव्य पालन तथा सदाचार का पुनीत संदेश भी दिया। सामाजिक क्षेत्र में हिंदुओं की ऊंच नीच भावना से प्रताड़ित निम्न वर्गीय शूद्रादि जब मुसलमानों में सामाजिक व्यवहार की समता देखते थे तो स्वभावतः वे अपनी हीनता मिटाने के लिए इस्लाम धर्म की ओर आकर्षित हो जाते थे। मुसलमान भी हिंदुओं की इस परिस्थिति से लाभ उठाकर उन्हें अपनाने और अपनी संख्या वृद्धि करने में प्रयत्नशील थे। स्वामी रामानंद ने हिंदुओं के समस्त वर्णों तथा अन्य विजातियों को भी भक्ति के क्षेत्र में एक साथ बैठाकर इस ऊंच नीच की भावना पर प्रबल आघात किया। शूद्र ही नहीं मुसलमानों को भी इससे बड़ा उत्साह मिला। हिंदुत्व की रक्षा के लिए तो यह अमोघ वरदान सिद्ध हुआ। स्वामी रामानंद द्वारा प्रवर्तित राम भक्ति की धारा द्विमुखी होकर प्रवाहित हुई। एक ओर उसने महात्मा कबीर की निर्गुण भक्ति का रूप धारण किया तो दूसरी ओर गोस्वामी तुलसीदास द्वारा प्रचारित सगुण राम भक्ति का। राम भक्ति के इन दोनों रूपों का उल्लेख हम आगे चलकर करेंगे। आचार्य वल्लभ। स्वामी रामानंद के पश्चात 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आचार्य वल्लभ हुए, जिन्होंने उस युग के धार्मिक आंदोलन पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। पीछे आचार्य विष्णु स्वामी के प्रसंग में हम इनका थोड़ा सा उल्लेख कर चुके हैं। आचार्य वल्लभ दक्षिणाथ के तैलंग ब्राह्मण श्री लक्ष्मी भट्ट के द्वितीय पुत्र और श्री नारायण भट्ट के शिष्य थे। लक्ष्मण भट्ट काशी में रहते थे। एक बार जब मुसलमानों ने काशी पर आक्रमण किया तो ये परिवार सहित काशी से दक्षिण की ओर चल दिए। मार्ग में इनकी पत्नी एल मागारू प्रसव पीड़ा से पीड़ित होने लगी और परिणामतः मध्य देश के रायपुर जिला अंतर्गत चंपारण के समीप एक वन में उनकी कोख से संवत 1535 की वैशाख कृष्णा एकादशी को आचार्य वल्लभ का जन्म हुआ। इनकी शिक्षा दीक्षा काशी में ही हुई। वयस्क होने पर यह तीर्थ यात्रा को निकल पड़े और दक्षिण में विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय की सभा में इन्होंने शैवों तथा मायावादियों को पराजित करके शुद्धाद्वैत की प्रतिष्ठा की। राजा ने इनकी विद्वता एवं वाग्मिता से प्रभावित होकर कनकाभिषेक द्वारा इनका सम्मान किया। दक्षिण से चलकर ये वृंदावन आए और बालकृष्ण की भक्ति का प्रचार किया। काशी छोड़कर प्रयाग के समीप अडैल में इन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। आचार्य वल्लभ का सिद्धांत पक्ष शुद्धाद्वैत और आचार पक्ष पुष्टि मार्ग के नाम से प्रख्यात है। यह पुष्टि मार्ग सेवा मार्ग कहलाता है। सेवा मार्ग के दो भाग हैं, एक नाम सेवा, दो रूप सेवा। रूप सेवा के तीन प्रकार हैं, तनुजा, वित्तजा और मानसी। मानसी सेवा सर्वश्रेष्ठ सेवा है। यदि भक्त का मन भगवान में नहीं लगा है तो वह अपने शरीर और धन को भी प्रभु के लिए समर्पित नहीं कर सकता। मानसी सेवा के भी दो प्रकार हैं, मर्यादा मार्ग तथा पुष्टि मार्ग। मर्यादा मार्ग में शास्त्रों के विधि विधान आ जाते हैं, जिनके अनुकूल आचरण करने से आत्मशुद्धि होती है और आत्मज्ञान प्राप्त होता है। पुष्टि मार्ग में समस्त विषयों से पृथक रहकर समस्त वासनाओं का परित्याग करना पड़ता है और अपने सर्वस्व को ईश्वरार्पण करते हुए सदैव प्रभु और प्रभु के भक्तों की सेवा में संलग्न होना पड़ता है। यही हरि लीला में भाग लेना भी है। लीला में ब्रह्म, जीव और जगत, इन तीनों का संबंध रहता है। जीव प्रवाही, मर्याद मार्गी और पुष्टि मार्गी तीन प्रकार के होते हैं। जीव की कुछ कोटियाँ इनके पहले की भी हैं, परंतु वे तामस और मूढ़ कोटियाँ हैं, अतएव साधन पक्ष से वे वंचित रहती हैं। प्रवाही जीव संसार के प्रवाह में बहते हुए प्रभु की ओर ध्यान लगाए रहते हैं। मर्यादा मार्गी शास्त्रीय विधि विधानों के अनुकूल प्रभु की पूजा और अर्चना किया करते हैं। पुष्टि मार्गी प्रपन्न और शरणागत होकर ईश्वर के साथ रहते हैं। साधना पक्ष में स्नेह आसक्ति और व्यसन क्रमशः जीव के विकास के द्योतक माने जाते हैं। सर्वप्रथम भक्त प्रभु से प्रेम करने लगता है, धीरे धीरे प्रभु में उसकी आसक्ति होती जाती है और अंत में प्रभु सेवा में लगे रहना उसके लिए व्यसन सा बन जाता है। पुष्टि मार्ग की उन्नति एवं विकसित अवस्था इसी व्यसन में दिखलाई देती है। शुद्ध पुष्टि मार्गी जीव वे हैं जो संसार के बंधनों को छिन्न भिन्न कर चुके हैं और भगवान की नित्य लीला में भाग लेने वाले हैं। हरी लीला गोलोक में सदैव होती रहती है। यह गोलोक श्री कृष्ण भगवान के बाल काल की लीलाओं से विशेषतः संबद्ध है। यहाँ भगवान का राजा रूप नहीं लीला रूप कार्य करता है। राज लीला में परम पुरुष अपनी शक्तियों के साथ क्रीड़ा करते हैं। वृंदावन इसके लिए उपयुक्त स्थान है। माधुर्य रस का जो प्रवाह यहाँ बहता है वह अन्यत्र कहीं भी नहीं। इसी वातावरण में भक्त भगवान का कृपा पात्र बनता है और उसके अनुग्रह को अनुभव करता है और रास लीला में प्रवेश करके परम आनंद को प्राप्त होता है। सिद्धांत पक्ष में शुद्धाद्वैत अविकृत परिणामवाद कहा जाता है। विश्व दो प्रकार का है, एक पृथ्वी सूर्य चंद्र आदि का बना हुआ जड़ जगत जिसमें चेतन जीव निवास करते हैं, दूसरा जीवों के ममत्व से उत्पन्न हुआ विविध क्रियाकलापों का संसार। आचार्य वल्लभ जगत और जीव दोनों को ही प्रभु का अंश कहते हैं और तात्विक दृष्टि से उनमें कोई अंतर नहीं मानते। प्राकृतिक जड़ जगत को वे नित्य प्रभु के साथ मिला हुआ अनुभव करते हैं। जीव ममत्व के वशीभूत होकर प्रभु से अपने शाश्वत संबंध सूत्र को विच्छिन्न कर लेता है, परंतु जड़ जगत प्रभु से परिच्छिन्न होने की शक्ति ही नहीं रखता। यही कारण है कि साधना संपन्न बड़े से बड़े भक्त भी लताओं के पत्ते बनने में अपना अहोभाग्य समझते हैं। उन्हें शुद्ध स्वार्थ राग और द्वेष जितना संतप्त करते हैं उतना इनसे विहीन होकर चेतना खोकर जड़वत बन जाना नहीं। आचार्य वल्लभ के मत में श्री कृष्ण ही एकमात्र शरण स्थल है। भक्त को उन्हीं का सदैव और सर्वत्र ध्यान रखना चाहिए। गोकुलाधीश बाल कृष्ण यदि हृदय में बने रहे तो जीवन की लौकिक तथा वैदिक सभी क्रियाएं सार्थक हो गईं। भक्त जब सर्वात्मना अपने आप को प्रभु के समर्पण कर देता है तो वह एक प्रकार से अपने योग क्षेम की ओर से निश्चिंत हो जाता है। अतः अपने लिए नहीं भक्त का जीवन प्रभु के लिए व्यतीत होता है और जब तक चलता है तब तक अनन्य भाव से प्रभु के स्मरण और भजन में ही संलग्न रहता है। पुष्टि मार्ग विचार द्वारा प्रभु के साथ एकता का अनुभव कराता हुआ आचरण द्वारा भी उनके साथ एक हो जाने की शिक्षा देता है। भक्ति की दृष्टि से वह शुद्ध पुष्ट जीवों को भी भगवान से भिन्न नहीं रखता है, अन्यथा वे हरि लीला में भाग नहीं ले सकते। पुष्टि मार्ग के अनुसार भक्त को सदैव श्री कृष्ण के चरणों में प्रणत होकर उनका स्मरण और भजन करना चाहिए। भगवान के इस भजन में तन मन तथा धन तीनों का उपयोग होना चाहिए। भक्त का परम पुनीत कर्तव्य प्रभु सेवा में अपने शरीर वैभव विचार आदि सबका समर्पण कर देना है। भक्तों की सेवा भी प्रभु सेवा का ही एक रूप है। सिद्धांत मुक्तावली में आचार्य जी ने मानसी सेवा को तन और धन की सेवा से बढ़कर माना है। भगवत भजन की ओर प्रेरणा देने वाला गुरु होता है, अतः आचार्य वल्लभ के मत में गुरु की आज्ञा का पालन प्रभु भक्ति का ही एक अंग है। आचार्य वल्लभ ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ मंदिर की स्थापना 1500 ईस्वी के लगभग की थी। यह मंदिर अम्बाला के सेठ पूरन मल खत्री की सहायता से 1520 ईस्वी के लगभग बनकर पूर्ण हुआ। इस मंदिर में हरि स्वरूप सेवा का प्रबंध नित्य तथा नैमित्तिक आचारों द्वारा किया गया। नित्याचार में आठों प्रहर की सेवा प्रमुख थी जो ऋतुक्रम तथा उत्सव क्रम के अनुसार किंचित परिवर्तित हो जाती थी। इसके 8 भाग थे, मंगला श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, संध्या, आरती और शयन। इसमें प्रातः से लेकर सायं तक कृष्ण की स्वरूप पूजा में मन लगा रहता था। नैमित्तिक आचारों में षड ऋतुओं के उत्सव, रक्षा बंधन आदि पर्व, अवतारों की जयंतियाँ, हिंदोला, फाग, वसंत आदि मनाने का आयोजन मंदिर में होता था। आचार्य जी के पुत्र और शिष्य गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अपने पिता का अनुसरण करते हुए श्रीनाथ जी के स्वरूप पूजन को और भी अधिक आगे बढ़ाया तथा 8 प्रहर की भावना, श्रृंगार, सजावट एवं कीर्तन आदि के मंडन को अत्यंत वैभवशाली रूप दे दिया। पीछे हमने वैष्णव भक्ति के पंचम युग को हरि लीला प्रधान युग कहा है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबद्ध राधा गोप गोपियों तथा गोपाल कृष्ण की जो लीलाएं आचार्य रामानुज और मव तक की कृतियों में स्थान नहीं पाती, जो असीम प्रेम तथा माधुर्य भाव से ओतप्रोत हैं, वे लीलाएं इसी पंचम युग की विशिष्ट संपत्ति हैं। आचार्य वल्लभ का पुष्टि मार्ग तो इन्हीं लीलाओं से विशेष रूप से पुष्ट हुआ है। हरि लीला में भाग लेना ही पुष्टि मार्गीय भक्त के जीवन का चरम आदर्श था। यही वह सेवा कार्य था जिससे भगवत कृपा प्राप्त होती थी और जो अंत में साधन और साध्य को अन्योन्याश्रित कर देती थी। मुक्ति भी इससे आगे तुच्छ मानी जाती थी। ब्रह्म सूत्र 3:4-47 के अनुभाष्य में आचार्य वल्लभ लिखते हैं, केचन भक्ता स्वगृहेषु एव स्नेहेन भगवता कार्य विविधोपचारे सेवां कुर्वन्तः तयैव निर्वृत्या मुक्तिमपि तुच्छां मन्यन्ते। इस लीला में पुष्टि मार्ग के भक्त अपना आचरण कृष्ण की नित्य एवं नैमित्तिक जीवनचर्या के साथ मानस रूप में मिला देते थे। प्रातः काल उत्थान से लेकर रात्रि में शयन पर्यंत इनका कार्य श्री कृष्ण की लीला में भाग लेना था। जब तक मंदिर खुला है तब तक वे श्री कृष्ण के विग्रह की सेवा में लगे हैं। यह सेवा दैनिक क्रियाकलाप से संबद्ध थी, जैसे कोई माता अपने बच्चे को जगाती है, उठाती है, नित्य कृत्य से निवृत्त करा के मुख धुलाती है, स्नान कराती है, कलेव देती है, श्रृंगार सज्जा से विभूषित करती है, उसी प्रकार ये भक्त श्री कृष्ण के विग्रह की बाल रूप में परिचर्या करते थे। सायंकाल को पुनः इसी प्रकार की परिचर्या चलती थी। दिन के मध्य का काल यमुना तट पर क्रीड़ा करने का था। आचार्य वल्लभ ने भगवान के बाल रूप की पूजा का ऐसा ही विधान बनाया था। उनके भगवान उनके लाल हैं। अपने लाल के पीछे पीछे सोते जागते सभी अवस्थाओं में जैसे माँ की आंखें और मन की वृत्तियाँ लगी रहती हैं, उसी प्रकार कृष्ण भक्तों को अपनी समस्त मनोवृत्तियाँ कृष्ण के साथ एक कर देनी पड़ती थी। मनोविज्ञान के अनुसार हम जैसे विचार रखते हैं अथवा जैसी हमारी भावनाएं बनती हैं, हमारा बाह्य शरीर भी वैसा ही बन जाता है। हमारे भीतर के मनोभाव ही हमारी बाह्य चेष्टाओं में अभिव्यक्त होते हैं। आचार्य वल्लभ ने एक स्थान पर लिखा है, भावनाएं कायाकल्प कर देती हैं। इन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर पुष्टि मार्गीय भक्त अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। भक्ति का जो रूप आचार्य रामानुज ने स्थापित किया था, जिसमें परमेश्वर का सतत ध्यान आवश्यक था और जो उपासना के भीतर आता था, वह निम्बार्क संप्रदाय तो हटा ही था, आचार्य वल्लभ के पुष्टि मार्ग से तो एकदम तिरोहित हो गया। स्वामी रामानंद के संप्रदाय में उपासना का स्थान इष्टदेव के भजन स्मरण और कीर्तन ने ले लिया था। आचार्य वल्लभ के संप्रदाय में हरि लीला सर्व प्रमुख बन गई। आध्यात्मिकता के साथ लौकिकता का इतना सुंदर सामंजस्य आज तक किसी भी उपासना मार्ग में नहीं देखा गया। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने आर्य जाति की पराधीनता जन्य विकट परिस्थिति को अनुभव किया। कृष्णाश्रय स्तोत्र में वे लिखते हैं, म्लेच्छा क्रांतेषु देशेषु पापैक निलयेषु च सत्पीड़ा व्यग्र लोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम गंगादि तीर्थ वर्येषु दुष्टैरेवावृतेष्विह तिरोहिताधिदेवेषु कृष्ण एव गतिर्मम अपरिज्ञानन नष्टेषु मंत्रेष्व व्रत योगिषु तिरोहितार्थ वेदेषु कृष्ण एव गतिर्मम नानावाद विनष्टेषु सर्वक्रम व्रतादिषु पाषंडैक प्रयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम। देश के समस्त भाग म्लेच्छों से आक्रांत हो रहे हैं तथा पाप के निकेतन बन गए हैं। सत्पुरुष पीड़ित हैं, गंगा आदि तीर्थों को दुष्टों ने घेर रखा है, अधिदेव तिरोहित हो गए हैं, अज्ञान के कारण वेद मंत्र व्रत योग आदि सभी नष्ट हो रहे हैं, नाना प्रकार के वादों ने केवल पाखंड चारों ओर फैला दिया है। ऐसी परिस्थिति में यज्ञानुष्ठान वेद पाठ उपासना आदि कर्मकांड का निर्वाह कैसे हो सकता है? ऐसे समय में तो कृष्ण ही हमारी एकमात्र गति है। आचार्य वल्लभ ने इस दुखद दशा के अनुशीलन से प्रेरित होकर हरि लीला गायन विशिष्ट पुष्टि मार्ग की स्थापना की और पुष्टि भक्ति के पोषण द्वारा आर्य जाति को जीवित रखने का सुख प्रयत्न किया है। संभव है इस पुष्टि मार्गीय हरि लीला प्रधान आमोदमयी चहल पहल में श्री कृष्ण क्रीड़ाओं में मुगलों के वैभव का भी कुछ प्रभाव हो, पर इसमें संदेह नहीं कि इस प्रकार की भक्ति पद्धति ने हिंदुत्व को स्थिर रखने में अनुपम कार्य किया। इस आत्म पोषक लोक विधायक लीला वैभव के समक्ष हमने यवन वैभव को भी तुच्छ समझा और अपने स्वाभिमान को ठेस न लगने दी। पुष्टि मार्गीय भक्ति इसी हेतु प्रवृत्ति मूलक है। उसमें निराशा नहीं, निवृत्ति नहीं, प्रत्येक जीवन में ज्वलंत राग है, वह आशा का स्रोत है। इस भक्ति में भक्तों ने अपना सुख दुख भगवान के साथ एक कर दिया था। भक्ति भी एकांत की उपासना नहीं, जनता का खुला हुआ आंदोलन था। निवृत्ति परायणता में भगवान भक्तों से दूर अनंत असीम और निर्गुण थे, पर इस भक्ति में वे शांत सतीम और सगुण बनकर घर घर में आंगन आंगन में रमते हुए क्रीड़ा करने लगे। यवन शासन की दुर्दांत पीड़ाओं से मर्माहत आर्य जाति को पंचम युग की इस भक्ति ने भगवत लीलाओं का मंजुल लेप लगाकर अपूर्व आश्वासन दिया। यह युग आर्य जाति की कर्तृत्व शक्ति के लिए भी स्मरणीय रहेगा। इस युग में राम श्याम भक्ति के मेघों ने बरस कर सरस्वती साहित्य सरस्वती को अपार रस धाराओं से आप्लावित कर दिया। काव्य चित्र संगीत आदि नाना ललित कलाएं भक्ति से उत्साह एवं स्फूर्ति पाकर अपने ओज के साथ चमक उठी। आर्य जाति का हृदय पराधीनता जन विषाद को भूलकर आनंद मग्न हो गया। सूफी संप्रदाय आमुख हिंदी के भक्ति कालीन साहित्य पर सूफी संप्रदाय का भी प्रभाव पड़ा है। तत्कालीन बाह्य परिस्थिति का चित्रण करते हुए मुस्लिम शासकों के नृशंस व्यवहार का उल्लेख किया जा चुका है। इस व्यवहार से बचने के लिए कुछ कापुरुषों ने इस्लाम को अवश्य स्वीकार किया होगा, परंतु अधिकांश हिंदू सूफी संतों के प्रभाव में आकर मुसलमान बने। शासकों के अत्याचार के अतिरिक्त आर्थिक प्रलोभन, स्वधर्म अज्ञान तथा हमारे ऊंच नीच की भावना से भरे हुए संकीर्ण जाति भेद भी हमारे अंगों को हमारे शरीर से काट कर इस्लाम का अंग बनाने में प्रेरक का कार्य कर रहे थे। परंतु यह सूफियों की प्रेम पद्धति तथा उनके सहृदयता से भरे चमत्कारों का ही प्रभाव था जिसने इस्लाम के पैर दृढ़ता के साथ इस भारत भूमि पर जमा दिए। सूफी कौन है? सूफी शब्द की व्युत्पत्ति पर विद्वानों के विभिन्न मत हैं। कहते हैं अरब में सूफा नाम की एक जाति थी जो मोहम्मद से पूर्व अज्ञानी अरबों से पृथक रहकर मक्का के मंदिर में पूजा उपासना किया करती थी। सूफी संप्रदाय इसी सूफा जाति से संबंध रखता है। दूसरे मत के अनुसार सूफी शब्द सफ से बना है। सफ का अर्थ है पंक्ति। अपने पवित्र एवं त्याग तपस्या से भरे जीवन के कारण सूफी कयामत के दिन सर्वप्रथम पंक्ति में खड़े होंगे। इस भावना के आधार पर सूफी शब्द की व्युत्पत्ति सफ शब्द से मानी जाती है। कुछ विद्वान सूफा शब्द से इसकी सिद्धि करते हैं। सूफा का अर्थ है मंदिर के प्रांगण का चबूतरा जिस पर बैठकर सूफी ध्यान मग्न हुआ करते थे। सूफ ऊन को भी कहते हैं जो संत ऊन के सादे कपड़े पहनते थे। निष्प्रिय सरल एवं स्वेच्छा दरिद्र रहते हुए ईश्वर के स्मरण में अपना जीवन व्यतीत किया करते थे, वे सूफी नाम से प्रसिद्ध हुए। कुछ लोग सूफी शब्द को यूनानी सोफिया शब्द से भी संयुक्त करते हैं जिसका अर्थ विद्या है। एक मत ऐसा भी है कि सूफी शब्द सफा शब्द से बना है। सफा का अर्थ है पवित्र निर्मल। कुछ भी हो इतना निश्चित है कि सूफी शुद्ध हृदय और पवित्र आचरण वाले थे। परमेश्वर की प्राप्ति ही इनका उद्देश्य था। धन गृह आदि के आसंग से अलग रहकर संन्यास्त मनोवृत्ति रखते हुए निर्धन एवं निष्काम जीवन व्यतीत करना इनकी प्रमुख विशेषता थी। सूफी संप्रदाय का उद्भव तथा उसके मान्य सिद्धांतों का विकास कैसे हुआ इस विषय में भी विद्वान एकमत नहीं है। ब्राउन तथा निकल्सन न्यू प्लेटोनिक मत का प्रतिपादन प्लेटिनस ने 205 ईस्वी में किया था। 6वीं शताब्दी के पश्चात इसने ईसाई तथा मुस्लिम रहस्यवाद का रूप धारण किया। मत से इसका संबंध जोड़ते हैं और कुछ विद्वान इसे भारतीय दर्शन से प्रभावित मानते हैं। न्यू प्लेटोनिक मत स्वयं भारतीय दर्शन से प्रभावित है, ऐसा भी कुछ विद्वानों का विचार है। द हिस्ट्री ऑफ प्योर ग्रीक फिलोसफी एंडेड विद द स्कूल ऑफ एरिस्टोटल बट रीअपीयर्ड ब्लेंड विद ओरिएंटल थॉट अंडर द नेम ऑफ न्यू प्लेटोनिज्म इन विच सेवरल एस्पेक्ट सेक्युलर टू द ईस्ट हैड मिंगल्ड सच एज द थ्योरी ऑफ इमेनेशन एस्थेटिक लाइफ कॉन्टेम्पलेशन एक्जेक्सी डिवोशन एंड वैनिटी ऑफ ऑल अर्थली प्लेजर आउटलाइन ऑफ इस्लामिक कल्चर वॉल्यूम 2 पेज 382 बाय AMA सुस्तरी बेंगलोर प्रेस 1938। मध्य एशिया तथा तुर्किस्तान में प्राप्त बौद्ध मूर्तियां ईसा पूर्व की कारला आदि गुफाओं में अंकित यवन व्यापारियों के बौद्ध मठों को दिए गए दान ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में बौद्ध भिक्षु धर्म रक्षित का सिकंदरिया से सिलोन में आगमन अरब के उत्तरी भाग में हिंदुओं के समान शेर पर लंबी चोटी रखने वाले एक जनवर्ग का ईसा पूर्व से लेकर अभी तक पाया जाना यूनानी इतिहासकार यरशी दल के मतानुसार ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में भारत के जहाजों का यमन और वहां से मिश्र तक पहुंचना अरबी इतिहास में भारतीय बंदरगाहों तथा वस्तुओं के नामों का मिलना फुजायल और इब्राहिम की जन्मभूमि मर्व तथा बलख में बौद्ध धर्म का प्रभाव बल्क हैड ए लार्ज मोनेस्ट्री विहारा हुज सुपरिटेंडेंट वॉज नोन एज द वरामाक इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑफ इंडियन कल्चर बाय डॉक्टर तारा चंद पेज 66। स्वयं इब्राहिम अब्राहम का कुछ विद्वानों द्वारा भारतीय तेरा जाति के नेता रूप में स्वीकरण भारतीय स्तोत्र से उद्भूत सुमेरु तथा मीडियन सभ्यताओं का मेसोपोटामिया और उसके पश्चिम में प्रचार आदि कुछ ऐसे तथ्य हैं जो इस विचार की पुष्टि करते हैं। फिर भी जिसे हम सूफी संप्रदाय कहते हैं वह अपने प्रचलित रूप में इस्लाम मजहब से विशेषतः संबद्ध है तथा हजरत मोहम्मद एवं उनके अनुयायी खलीफाओं के जीवन से प्रेरणा तथा स्फूर्ति प्राप्त करता रहा है। हजरत मोहम्मद के अनुयायियों ने जब धर्म प्रचार के स्थान पर धर्म प्रचार के साधक राज्य विस्तार को श्रेयस्कर समझकर आसपास के देशों को जीतना प्रारंभ किया तो कुरान में प्रतिपादित नियमों का पालन करना उनके लिए असंभव हो गया। राजनीतिक उथल पुथल सांस्कृतिक विकास को अवरुद्ध कर ही देती है। इस्लाम की अनुगमता भी इसमें उलझ गए। हजरत मोहम्मद के कुछ सच्चे भक्त कुरान से अवश्य चिपके रहे पर संगठन के अभाव में वे भी कोई स्थिर कार्य न कर सके। इस्लाम राजनीतिक दृष्टि से फैलता हुआ ईरान तक पहुँच गया पर ईरान की आर्य संस्कृति ने उसे प्रभावित करना प्रारम्भ कर दिया। ऐसे ही समय में ईश्वर चिंतन तप एवं निवृत्ति परायणता को प्रधानता देने वाले कुछ सूफी संतों का उदय हुआ। इस्लामी नहीं ईश्वर विश्वासी प्रेमी और ध्यानी सूफी कुरान में अंधविश्वास नहीं करते थे। ये कुरान में ईश्वर प्रेम परक वाक्यों की खोज किया करते थे। आरंभिक सूफियों में प्रभु के स्मरण इंद्रिय दमन त्याग आदि की भावना अत्यंत तीव्र थी। वे ईश्वर के विचार ईश्वर में निवास तथा ईश्वर के कार्यों में ही अपने को तल्लीन रखते थे और मिताहार द्वारा एकांतवास आत्म शिक्षण तथा स्वार्थ त्याग द्वारा सत्य प्राप्ति को अपना ध्येय समझते थे। शासकों तथा मुल्लाओं से उनका कोई विरोध नहीं था। उनकी प्रारंभिक एकांत प्रिय वैराग्य वृत्ति में रबिया ने प्रेम का संचार किया। प्रेम भावना ने लोक लज्जा की दीवारों का उल्लंघन करके सूफियों का प्रेम संबंध उस परम सत्ता की महत्ता से स्थापित कर दिया। रबिया बसरा में 717 ईस्वी के लगभग उत्पन्न हुई थी। इसके द्वारा सूफियों के संयत शांत एवं दांत जीवन में भावमयता का प्रवेश हुआ। सूफियों का रहस्यवाद इसी प्रेम भावना पर अवलंबित है। विरागी से प्रेमी बनकर सूफियों ने बाह्य विधान परायणता तथा धर्मांधता का भी परित्याग कर दिया। सूफी ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखते थे और धर्म को राजनीति से पृथक समझते थे। इनकी धारणा थी कि धार्मिक व्यक्ति दुनियावी धंधों से दूर रहकर ही ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्य को सुचारू रूप से निभा सकता है। ईश्वर में अटल विश्वास रखने के कारण ये किसी भी पाखंडी मुल्ला या सुल्तान से भयभीत नहीं होते थे। अपनी इसी स्वतंत्र मनोवृत्ति के कारण ये बाद में दोनों के कोप भाजन भी बने और शूली तक पर चढ़ाए गए। सूफियों के यति जीवन में राबिया ने प्रेम का संचार किया था। जब वे ईरान पहुंचे तो ईरान के बुद्धि वैभव ने भी उनकी साधना पर प्रभाव डाला। वे प्रेम तथा विश्वास के साथ चिंतन को भी आवश्यक समझने लगे। यदि कोई तर्क उनके बुद्धि विश्वास को तृप्ति देने वाला मिल जाता तो वे उसे सादर ग्रहण कर लेते। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में ही सूर्य को देखा जा सकता है उसी प्रकार ईश्वर का दर्शन भी ईश्वर के कृपा भाजन हृदय में ही संभव है, ऐसा जूल नून का विचार था। जूल नून ने सूफी मत को विचार पूर्ण तर्क शैली से परिपुष्ट किया। मुल्लाओं के मतानुसार कुरान में अकल को दखल देने का अधिकार ही नहीं था। जूल नून ने स्वतंत्र चिंतन पद्धति को बढ़ावा दिया। परिणामतः उसे इस्लाम का विरोधी और काफिर समझा गया तथा कारावास में डाला गया। दूर नून ने गुरु आज्ञा पालन को भी महत्व दिया है और गुरुहीन साधक को शैतान का उपासक तक कह दिया है। जुनैद ने 966 ईस्वी में दूर नून मिश्र की शिक्षाओं का संग्रह किया। सूफी जिस गुह्य विद्या को प्रेम के रहस्य को अपना सर्वस्व समझते थे उसे जुनैद ने गोपनीय रखना ही उचित समझा। वह बाहर से कट्टर मुस्लिम पर अंदर से सूफी था। अतः मुल्ला और फकीर दोनों उसका समान सत्कार करते थे। गजाली ने उसी का अनुसरण किया। गजाली के शिष्य हल्लाज और मंसूर थे जो 978 ईस्वी के लगभग सुल्तान और सूफियों के संघर्ष में शासक और साधक की मान्यता वन्नी में आत्माहूत हो गए। मंसूर ने भारत की भी यात्रा की थी। वे प्रेम को परमेश्वर का सार समझते थे। इस्लाम संघ के साथ सहयोग व्यवहार बुद्धि ने सूफियों को प्रेरित किया कि मुल्लाओं और शासकों का विरोध करके शूली पर चढ़ना अनावश्यक है, वे इस्लाम के एक अंग हैं। भारत तक आते आते उनका सुल्तानों तथा मुल्लाओं से विरोध समाप्त हो गया था। यहाँ आकर वे इस्लाम के प्रचारक बन गए। उन्होंने अपना संपर्क शासक वर्ग इस्लाम संघ तथा जनता तीनों के साथ जोड़ा। इस्लाम की कट्टरता को उन्होंने अपने प्रेम को भावना से मृदुल बनाया। हिंदुओं के साथ खेल मेल बढ़ाकर उन्होंने यहाँ की सांस्कृतिक परंपराओं ऐतिहासिक व्यक्तियों घरेलू कहानियों रीति रिवाजों तथा आंतरिक निर्बलताओं सबलताओं से परिचय प्राप्त किया। वे यहाँ के वातावरण में यद्यपि घुल मिल से गए पर अपने स्वतंत्र इस्लामी अस्तित्व को भी उन्होंने सुरक्षित रखा। हिंदी का प्रेमाख्यानक काव्य साहित्य इन्हीं सूफी संतों की देन है। इसमें एक ओर हिंदुओं के घरों में प्रचलित कहानियां काव्यबद्ध की गई हैं, तो दूसरी ओर तत्कालीन मुस्लिम बादशाहों की प्रशंसा और प्रच्छन्न तथा उन्मुक्त दोनों ही रूपों में इस्लाम मजहब के सिद्धांतों के प्रचार का प्रयत्न भी अंतर्हित है। सूफी अपने ग्रंथों में मुस्लिम शासकों की अन्यायपूर्ण क्रूरताओं एवं नृशंस अत्याचारों का वर्णन करने में भी चुप रहे हैं। विद्यापति कबीर सूर तुलसी प्रभृति प्राय सभी कवियों ने अपने समय की दीन एवं दलित दशा का कुछ न कुछ उल्लेख लिया है, पर सूफी कवियों को तो इस्लाम धर्म शासन का अनुमोदन करना था, अतः अपने समय की जन पीड़ा का प्रदर्शन करने में मौनावलंबन लेना ही उन्होंने हितकर समझा। अन्योन्य प्रभाव। सूफियों की ख्याति उनके प्रेमाख्यानक काव्यों पर अवलंबित है। शुद्ध व्यक्तिगत प्रेम तथा ईश्वरीय प्रेम के प्रतीकात्मक वर्णन की परंपरा ईरान देश में पहले से ही चली आती थी। उसी के प्रभाव तथा फारसी साहित्य के माध्यम द्वारा वह भारतीय सूफी साहित्य में आई। मसनवी शैली भी जिसमें ये सूफी प्रेमाख्यानक काव्य लिखे गए हैं, फारसी साहित्य की ही एक विशिष्ट शैली है। स्वर्गीय आचार्य पंडित रामचंद्र शुक्ल की सम्मति में सूफी कवियों ने अपने प्रेमाख्यानों में भारतीय तथा पारसिक दोनों प्रेम पद्धतियों का सम्मिश्रण किया है। यहाँ रहकर सांस्कृतिक आदान प्रदान द्वारा ऐसा हो जाना स्वाभाविक भी था। सांस्कृतिक आदान प्रदान के और भी कई उदाहरण इतिहास में मिलते हैं। सूफियों ने इस देश की भाषा को तो अपना ही लिया था और इसमें महत्वपूर्ण काव्य साहित्य का निर्माण भी उन्होंने किया था। साथ ही अधिकांश मुसलमान बादशाहों ने हिंदू कवियों को अपने दरबार में रखकर विशुद्ध हिंदू भावनाओं को पल्लवित होने का भी अवसर दिया। महापात्र नरहरि, गंग, हरिनाथ आदि का अकबर और जहांगीर के दरबार में रहना, महाकवि भूषण का सर्वप्रथम औरंगजेब के दरबार में आश्रय पाना, महाकवि देव का आजम शाह के आश्रित रहना, बिहारी सत्सई पर आजम शाह की टीका आदि अनेक उदाहरण इस तथ्य के समर्थन में दिए जा सकते हैं। अनेक मुसलमानों को हिंदू धर्म ने भी प्रभावित किया। 16वीं सदी के शाह करीम सिंधी अहमदाबाद के एक वैष्णव साधक से प्रभावित थे। स्खलन की दशा में ओम अक्षर ही इनका मार्ग प्रदर्शक बनता था। गुजरात में इमाम शाह द्वारा स्थापित पीरन पंथ के अनुयायी मृतक संस्कार के अतिरिक्त अन्य अपने समस्त संस्कार हिंदुओं की भांति करते हैं और अपने विश्वास के आधार पर विष्णु के दशम अवतार निष्कलंक की उपासना करते हैं। मोहम्मद शाहद उल्लाह द्वारा 17वीं सदी में स्थापित पीर ज्यादा संप्रदाय भी इसी प्रकार का है। ताज रस्खान, गुजरात के खोजा आदि पर वैष्णव धर्म का प्रभाव पड़ा था। अकबर ने जिस कविराज उपाधि को देना प्रारंभ किया था वह औरंगजेब के दरबार तक चलती रही। बाद के मुस्लिम बादशाह भी हिंदू कवियों का आदर करते रहे। मान्यताएं। भारतीय सूफी संप्रदायों में चिश्तिया, नक्शबंदिया, कादिरिया तथा सुहरावर्दिया संप्रदाय प्रमुख हैं। हिंदी के अधिकांश सूफी कवि चिश्तिया संप्रदाय के थे। सूफी कवियों का दल एक ही तत्व को सृष्टि रूप में फैला हुआ मानता है। इसके मतानुसार जगत उस तत्व का प्रतिबिंब या आभास मात्र नहीं है, इसमें उसके गुणों का समावेश है। फिर भी यह जगत विशुद्ध रूप से वही तत्व है ऐसा नहीं कहा जा सकता। पार्थिव रूप उस अपार्थिव की अभिव्यक्ति मात्र है, स्वयं वही नहीं। सूफियों का दूसरा दल सृष्टि को ईश्वर का प्रतिबिंब मानता है। ईश्वर और सृष्टि के विविध दृश्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव का संबंध है। सूफी ईश्वर की सत्ता और महत्ता का बार बार उल्लेख करते हैं। इन्होंने ईश्वर में चार प्रकार के गुण माने हैं। 1. जात, ईश्वर के स्वाभाविक स्वरूप संबंधी गुण। 2. जमाल, ईश्वर के सौंदर्य बोधक गुण। 3. जलाल, ईश्वर की शक्ति से संबंधित गुण। और 4. कमाल, ईश्वर की अद्भुत शक्ति के व्यंजक गुण। मानव अपनी जीवन यात्रा में अभावात्मक और भावात्मक दो पड़ावों का अनुभव करता है। अभावात्मक पड़ाव वैराग्य या निवृत्ति का है और भावात्मक पड़ाव स्वरूप उपलब्धि का। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में इन्हीं को असंभूति, विनाश और संभूति कहा गया है। एक मृत्यु से पार करता है तो दूसरा आत्मा को परमात्मा में अवस्थित करता है। सूफियों ने एक को फना, कुछ विद्वान फना की तुलना बौद्धों के निर्वाण से करते हैं। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में स्पेन के प्रसिद्ध रहस्यवादी कवि मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी ने फना के विकास की 7 स्थितियां स्वीकार की थीं। पाप से मुक्ति, कर्म से मुक्ति, गुणों से मुक्ति, व्यक्तित्व से मुक्ति, भौतिक जगत से मुक्ति, ईश्वरेतर सत्ता से मुक्ति और ईश्वरीय गुणों एवं उनके संबंधों से मुक्ति। सूफी मत और हिंदी साहित्य, पृष्ठ 39। इन स्थितियों, अंतिम स्थिति बहुत कुछ बौद्धों के निर्वाण के ही समान है और अन्य स्थितियाँ भी भारतीय चिंतन पद्धति से मेल खाती है। गुण विशेषता अंतःकरण के साथ आविर्भूत होते हैं और व्यक्तित्व अहंकार के साथ। अहंकार विकास क्रम में महत्त्व के उपरांत आता है। गुणों से मिलकर यही व्यक्तित्व का निर्माण करता है। अहंकार का लय द्यव या महत्त्व में होता है, इसी को व्यष्टि या समष्टि में लय कहते हैं। द्यव का विलय अव्यक्त में होता है, इसी के साथ भौतिक जगत से मुक्ति मिल जाती है। पर ईश्वरीय गुणों एवं संबंधों से मुक्ति मानना तो कोरा बुद्धि विलास ही प्रतीत होता है। इस मान्यता पर निश्चित रूप से बौद्धों के शून्यवाद का प्रभाव पड़ा है, जिसका रूपांतर अद्वैतवाद है और दूसरे को बका कहा है। इस्लाम के विधि विधानों में सलात, प्रार्थना, जकात, दान, सोम, उपवास, हज, तीर्थ यात्रा, तिलवत, कुरान पाठ, अवराध, नित्याराधन, जिक्र, स्मरण, फिक्र, ईश्वर चिंतन और समा कीर्तन प्रमुख माने गए हैं। सूफी यद्यपि इन सब में विश्वास करते हैं, फिर भी उनकी मान्यताएं इस्लामी मान्यताओं के रूप से कुछ भिन्न हैं। सामान्यतः मक्का शरीफ की यात्रा हज कहलाती है, पर सूफियों ने हज को मानस यात्रा का रूप भी दिया है। प्रार्थना श्रेष्ठ तत्व है, इसे स्वीकार करके भी सूफियों ने ध्यान को श्रेयस्कर माना है। वे पीर, फकीर और गुरु की वाणी में कुरान के समान ही विश्वास करते हैं। सूफियों का कथन है कि जब ईश्वर प्रेम स्वरूप है और हम उससे प्रेम करते हैं, तो पंच नमाज भी क्यों, प्रतिक्षण उसकी ओर हमारा प्रेम भाव रहना चाहिए। इसी प्रकार जब ईश्वर सर्वत्र हाजिर नाजिर है और हम सब के अंदर व्याप्त है, तो काबा ही क्यों, किसी भी ओर मुख करके उससे प्रेम किया जा सकता है, और सबसे बढ़कर तो उसका दर्शन स्थान हमारा हृदय ही है। सूफी जितनी प्रतिष्ठा काबा या मोहम्मद साहब की कब्र की करते हैं, उससे कम प्रतिष्ठा मजार, रोजा और दरगाह की नहीं करते। वे अपने पीर को समाधि पर दीप जलाते, धूप देते, फूल चढ़ाते और वंदना भी करते हैं। वे सांसारिक पदार्थों से मन को हटाकर ईश्वर के सौंदर्य पर मुग्ध होते हैं और उसी से प्रेम करते हैं। हजरत मोहम्मद को इसके लिए वे मध्यस्थ नहीं मानते। सूफी संगीत को भी साधना में सहायक स्वीकार करते हैं। सूफियों की इन मान्यताओं पर भारतीय दर्शन तथा पूजा पद्धति का असंदिग्ध प्रभाव पड़ा है। सूफी अपने मुरीद साधक के सामने चार मार्ग रखते हैं, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। शरीयत शरह का ज्ञान प्राप्त करना है। शरीयत के पश्चात तरीकत में पदार्पण करना पड़ता है। नफ्स या अहम भाव के साथ युद्ध करते हुए इंद्रियों द्वारा प्रभु प्राप्ति तक पहुंचने का मार्ग तरीकत है, जिसे कर्मकांड कहा जा सकता है। तरीकत में तप, द्वंद्व सहन, एकांत सेवन, मौन आदि की गणना है। मारिफत उपासना है, जिससे नफ्स अहम भावना दूर होती है, हृदय में परम ज्ञान का उदय होता है और साधक आरिफ प्रजा संपन्न कहलाने की योग्यता प्राप्त करता है। मुरीद या साधक को ग्वारिफ प्राप्त होने से पहले तोबा, प्रायश्चित, जहद, स्वेच्छा दारिद्र्य, सब्र, संतोष, शुक्र, कृतज्ञता, रियाज, दमन, तवक्कुल, ईश्वर कृपा पर पूर्ण विश्वास और रजा, तटस्थता में से निकलना पड़ता है, जो उसके अंदर ईश्वर के प्रति अटल अनुराग, मोहब्बत या इश्क को जागृत कर देते हैं और साधक पवित्र बन जाता है। उसकी आत्मशुद्धि हो जाती है। तौबा भय से नहीं, प्रेम से प्रेरित होना चाहिए। ईश्वर अनुराग को भी सूफी साधन ही मानते हैं। मारिफत की अवस्था बुद्धिजन्य नहीं, अनुभूतिजन्य होती है। जैसे स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंब पूर्ण और शुद्ध पड़ता है, वैसे ही पवित्र हृदय में प्रभु का प्रत्यक्ष और यथार्थ दर्शन होता है। ईश्वर अनुराग या इश्क मारिफत के भावावेगमय रूप का ही नाम है। अनुराग की तीव्रता से स्वभावतः वज्ध समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। विरही साधक वस्त के सर्वोच्च सोपान पर चढ़कर ही वस्ल अर्थात सत्य स्वरूप परमेश्वर को उपलब्ध करता है। इसी को साक्षात्कार या हकीकत कहते हैं, जिसके एक ओर पना है और दूसरी ओर बका। हकीकत साधन नहीं, साधक की परम सर्वश्रेष्ठ अनुभूति है, जिसकी प्राप्ति शरीयत एवं तरीकत के सम्यक पालन के पश्चात मारिफत द्वारा होती है। कुछ ऐसे भी संस्कार संपन्न संत एवं सूफी हुए हैं, जिन्हें कर्मकांड की कठोरता में से नहीं गुजरना पड़ता। प्रभु कृपा ने उन्हें सब कुछ प्राप्त करा दिया। इस्लाम के कट्टर अंध भक्तों ने शरीयत की अपेक्षा करने के कारण इन्हें बेशरा या जिंदी कहा है। सूफियों ने चार लोकों की कल्पना की है, नासूत, नरलोक, मलकूत, देवलोक, जबरूत ऐश्वर्यलोक और लाहूत माधुर्यलोक। शरीयत द्वारा मोमिन नासूत में, तरीकत द्वारा मुरीद मलकूत में, सालिक इन दोनों के द्वारा मारिफत में मग्न होकर जबरूत में, और आरिफ हकीकत द्वारा लाहूत में लीन होता है। कुछ सूफियों ने लाहूत के आगे हाहूत अर्थात सत्य लोक की भी कल्पना की है। साधक इन लोकों को अपने प्रयत्न से प्राप्त करता है, पर हाल की उपलब्धि ईश्वर की कृपा से ही संभव होती है। हाल के दो पक्ष हैं, एक में फना व्यष्टि नाश, फकद अहम समाप्ति और शुक्र प्रेम मद आते हैं, दूसरे में बका आत्मावस्थिति, वज्द प्रभु प्राप्ति और शह पूर्ण शांति आते हैं। कुछ सूफियों ने सोपानों का क्रम इस प्रकार माना है, अबूदिया एक निष्ठा, इश्क प्रेम, सहज स्वेच्छा त्याग, मुआरिफ चार साधनों से संपन्न होना, वज्द आत्मविस्मृति, हकीकत परमेश्वर साक्षात्कार और वस्ल ईश्वर प्राप्ति। सूफियों ने इन सोपानों या साधनों में वज्रयानियों या गोरख पंथियों के हठ योग और भागवतों के प्रेम तत्व का भी सम्मिश्रण किया है। सूफी दर्शन में तर्क का महत्व ईरान की देन है, पर उसकी साधना में प्रधानता तर्क की नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह, प्रेम और समर्पण की रही है। इस संबंध में जो संकेत सूफियों को कुरान में मिले उनके आधार पर उन्होंने नवीन उद्भावनाएं की और कुरान के जो वाक्य कुछ प्रतिकूल से जान पड़े उनकी नवीन रूप से व्याख्या की। भारत में आकर तो उन्होंने कुरान का किंचित भी विरोध नहीं किया। सूफी संप्रदाय यहाँ आकर इस्लाम की गोद में ही फला फूला। रामानंद से दीक्षा लेकर कबीर ने जिस संत मत का प्रवर्तन किया था उसने सूफी संप्रदाय के फकीरों के साथ मिलकर हिंदू और मुसलमान दोनों की कट्टरता और धर्मांधता को दूर करने का श्लाघनीय प्रयत्न किया। सांस्कृतिक समन्वय में भी दोनों ने अपूर्व योग दिया। यदि एक ओर निम्न स्तर के हिंदू सूफियों के उदार व्यवहार के कारण मुसलमान बने तो दूसरी ओर मुसलमान भी वैष्णव धर्म की अमिट छाप पड़ने से न बच सके। हिंदी काव्य पर सूफी प्रभाव की मीमांसा। सूफी ईश्वर को प्रेम स्वरूप मानते आए हैं। प्रेम बहुत कुछ सौंदर्य पर अवलंबित है, अतः उन्होंने ईश्वर में अनंत सौंदर्य के दर्शन भी किए हैं। कुरान में ईश्वर के इन दोनों रूपों का वर्णन है। उसके सूरा 3 आयत 48 तथा सूरा 62 आयत 4 में ईश्वर को अनंत सौंदर्यशाली लिखा है। कुरान में यह भावना बाइबिल से आई। जोन के प्रथम पत्र 4:8 में लिखा है कि ईश्वर प्रेम है। पंडित चंद्रबली पांडे ने तसव्वुफ अथवा सूफी मत में बाइबिल से भी पहले यहूदियों की मान्यताओं में प्रेम भाव की विद्यमानता दिखाई है। चित्त की एक वासनात्मक वृत्ति रती है जो प्रेम का रूप धारण करती है। प्रेम प्रथम लौकिक वस्तुओं और व्यक्तियों से ही होता है, परंतु धीरे धीरे सूक्ष्म भावनाओं से होता हुआ अंत में सूक्ष्मतम परमात्मा के साथ भी संयुक्त हो जाता है। सूफियों के अनुसार विश्व प्रेम भी परमात्मा प्रेम का ही रूप है, क्योंकि उस अनंत सौंदर्यशाली और प्रेम स्वरूप प्रभु का सौंदर्य और प्रेम उसकी रचना में भी भरा पड़ा है। जब सर्वत्र उसके सौंदर्य की छटा बिखरी पड़ी है, उसके प्रेम का ही समुद्र लहरें मार रहा है, तो क्यों न उसमें डूबकर आनंद की उपलब्धि की जाए। पर जीव के लौकिक संबंध इस उपलब्धि में अनेक अंतराय उपस्थित करते रहते हैं और परिणामतः आत्मा इस आनंद प्राप्ति से वंचित हो जाता है। साधक इस अवस्था को अनुभव करके अंतरायों की उपस्थिति में प्रभु के विरह से व्याकुल हो उठता है। सूफी साहित्य में इस विरह का अत्यंत प्रभावोत्पादक एवं मर्म स्पर्शी वर्णन मिलता है। कतिपय आलोचकों की सम्मति में प्रभु के विरह से उत्पन्न सूफियों की इस प्रेम पीढ़ ने हिंदी काव्य को विशेष रूप से प्रभावित किया है। कम से कम निर्गुणीय संतों की रचनाओं में माधुर्य भाव के जिस विरह पक्ष का उद्घाटन हुआ है वह इन आलोचकों के अनुसार सूफी संप्रदाय की ही देन है। सूफी मत का प्रारंभिक युग वैराग्य प्रधान एकांत चिंतन का युग है। 8वीं शताब्दी में बसरा में उत्पन्न राबिया ने सूफियों की इस वैराग्य वृत्ति में प्रेम भाव का संचार किया, ऐसा हम पीछे लिख चुके हैं। निर्गुणीय संतों में कबीर का स्थान प्रमुख है। कबीर स्वामी रामानंद के शिष्य हैं। रामानंद जी वैष्णवों की वैरागी शाखा के प्रवर्तक हैं। अतः कबीर पर जो मौलिक प्रभाव पड़े हैं उनका बीज वैष्णव धर्म के अंतर्गत है। भागवत भक्ति के स्वरूप का विश्लेषण करते हुए हमने नारद भक्ति सूत्रों का उल्लेख किया है। इन सूत्रों में संख्या 82 के अंतर्गत जिस कांता शक्ति और परम विरह शक्ति का वर्णन है वे माधुर्य भाव के ही अंग हैं। नारद भक्ति सूत्रों का निर्माण 8वीं शताब्दी से पूर्व ही हो चुका था, ऐसा प्रायः सभी विद्वानों का मत है। फिर कबीर के माधुर्य भाव तथा प्रणया शक्ति को सूफी संप्रदाय का प्रभाव क्यों माना जाए जब वे सीधे वैष्णवों की प्रेमा शक्ति से संबद्ध दिखाई देते हैं। प्रेम भाव की ये आसक्तियाँ श्रीमद् भागवत के गोपी कृष्ण प्रेम में भी परिलक्षित होती हैं, जो ईसा की 3री शताब्दी तक निश्चित रूप से बन चुकी थी। यही क्यों इन आसक्तियों का मूल हमें वैदिक ऋचाओं में भी उपलब्ध होता है, जिनके उदाहरण हम वैदिक भक्ति के विश्लेषण में दे चुके हैं। रही निर्गुण संप्रदाय वालों के निराकार प्रभु के साथ प्रेम की बात, वह गोपी कृष्ण प्रेम पर भले ही घटित न हो सके, वैदिक भक्ति पर तो 16 आने घटित होती है। अतः इस संबंध में निराकार और साकार का प्रश्न उठाना भी निरर्थक हो जाता है। वैसे भी प्रणय भावना निराकार अथवा साकार किसी भी व्यक्तित्व के प्रति की जा सकती है। प्रेम साकार से ही हो यह आवश्यक नहीं है। भागवत की प्रणय भावना में मांसलता अवश्य गई है, पर भागवत के कृष्ण परब्रह्म है और गोपिकाएं उच्च कोटि के साधक जीवों की प्रति, इस विषय में किसी को भी संदेह करने का अवकाश नहीं है। सूर आदि हिंदी के कवियों ने इस तथ्य का अत्यंत आग्रह के साथ उल्लेख किया है। इस स्थल पर यह भी विचारणीय है कि निर्गुणोपासक संतों की प्रेम भावना मानव हृदय के साथ वास्तव में सृष्टि के प्रारंभ से ही संबद्ध है। दिन और रात्रि के समान इसका आरोह और अवरोह अवश्य होता रहा है। कभी इसका अतिरेक हुआ है तो कभी इसे संयत एवं मर्यादित रखने की चेष्टा की गई है। वैदिक युग में इसका संयत रूप था, जिसकी एक झलक हमें वाल्मीकि रामायण में भी मिलती है। बौद्ध आश्रमों के भिक्षु भिक्षुणियों के भ्रष्ट प्रेम के प्रभाव से इसका नग्न रूप सिद्धों के साहित्य में परिलक्षित हुआ ही था कि नाथ पंथ ने उदय होकर इसे पुनः कठोर संयम की ओर मोड़ दिया। कभी इसका प्रेम परिस्थितियों के वशीभूत हो स्वतः आध्यात्मिक बन गया। अष्टछापी हरिदासी तथा राधा वल्लभी संप्रदायों के राधा कृष्ण भक्त कवियों में प्रेम का उद्दाम वेग प्रकट हुआ तो गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में उसे मर्यादित प्रशांत रूप धारण करना पड़ा। प्रेम के उतार और चढ़ाव की यह कहानी अत्यंत अभिराम है। सूफियों ने स्वयं स्वामी मठों के लौकिक माधव भाव को आध्यात्मिक रूप दिया था। अतएव कबीर की प्रेमा भक्ति सूफियों की नहीं इस देश की परंपरा से संयुक्त वैष्णव भक्ति की देन है। इसी संबंध में कैशोर प्रेम की भी चर्चा की जाती है। कैशोर प्रेम निस्संदेह समी संप्रदायों की देन है। सूफियों ने भी किसी रमणी या किशोर को प्रणय प्रतीक बनाया है। कहते हैं प्रेम युवा है, वह जिस पर छाता है उसे भी युवा बना देता है। भारत में देवों को सतत युवा बने रहने का वरदान प्राप्त है। सतत तरुण देवताओं और सतत तरुणी अप्सराओं की प्रेम कहानियां पुराणों में प्रसिद्ध हैं। कैशोर अवस्था युवा अवस्था के प्रारंभ की अवस्था है। शारीरिक सौंदर्य इस अवस्था में अभिनव उन्मेष पाता है। अंगों की गठन, रक्त की उमड़कर बाहर फूटती हुई लालिमा, ओज और वीर्य से उत्पन्न प्रदीप्त कांति सब कुछ दूसरों की आंखों के लिए आकर्षक इंद्रजाल का रूप धारण कर लेती है। सौंदर्य प्रेमी सूफियों ने इसी हेतु अपने अनंत सौंदर्यशाली ईश्वर को कैशोर रूप प्रदान किया है। इस रूप का प्रभाव हिंदी साहित्य पर पड़ने ही वाला था कि आचार्य वल्लभ जैसे जागरूक सिद्ध महापुरुष ने उसे भारतीयता के ढांचे में ढालकर ऐसा मनोरम आध्यात्मिक रूप प्रदान किया जिसमें ईरानी अश्लीलता आते आते बाल बाल बच गई। ईरानी सूफी जिस कैशोर प्रेम में मग्न हुए उसने ईरान में अप्राकृतिक प्रेम का रूप धारण कर लिया था, परंतु भारत में अष्टछापी कवियों ने अपने इष्ट देव के बाल एवं कैशोर रूप का जो वर्णन किया वह विशुद्ध रूप से भक्ति के क्षेत्र तक ही सीमित रहा। किशोर कृष्ण के साथ गोपिकाएं प्रेम करती हैं और अपना सर्वस्व उन पर निछावर कर देने के लिए तत्पर हैं। गोप भी उनसे प्रेम करते हैं। इन दशाओं में वात्सल्य माधुर्य तथा सख्य तीनों प्रकार की भक्ति के रूप खड़े कर दिए गए हैं जिनमें अश्लीलता का लवलेश भी नहीं आ पाया। सूफियों ने ईश्वर को जो रमणीय रूप प्रदान किया है वह भी इस देश की परंपरा के अनुकूल नहीं था। हिंदी कवियों ने प्रभु को पत्नी रूप में नहीं मातृ रूप में गृहित किया है। भारतीय परंपरा में प्रभु का यह मातृ रूप वेद काल से चला आता था। शाक्त मत के अनुयायी ईश्वर की उपासना शक्ति दुर्गा उमा चंडी काली आदि विभिन्न नामों से प्रभु की मातृ शक्ति के रूप में ही करते रहे हैं। राधा वल्लभियों ने भी राधा को इसी रूप में स्वीकार किया है और यदि कहीं पर राधा पत्नी के रूप में आई भी है तो वहाँ पर वह पर ब्रह्म कृष्ण की परम एवं अभिन्न शक्ति के रूप में ही आई है। अतः हिंदी कवियों ने सूफियों की इस रमणीय रूप में आराधना की पद्धति को भी ग्रहण नहीं किया। जो विद्वान हिंदी के कृष्ण भक्त कवियों की रचनाओं में सूफियों के रहस्यात्मक प्रेम की छाप अनुभव करते हैं उन्हें इस देश में प्रचलित प्रेम परम्परा की खोज करनी चाहिए जिसमें देश और काल को विभिन्नता के अनुसार विश्व की नाना वाणियों में ईश्वर के नाना नाम गृहित हुए हैं और इन नामों द्वारा प्रभु की प्रेमा भक्ति का रूप प्रकट किया गया है। वह भी वाचार्थ और व्यंग्यार्थ दोनों शैलियों में है। प्रभु के अवतारों में नाम रूप लीला और धाम का वर्णन जहाँ व्यंजना परक शैली में आया है वहाँ साधारण व्यक्तियों के लिए कथा की मनोरंजकता और साधकों के लिए व्यंजना द्वारा तथ्य की अभिव्यक्ति के उद्देश्य से है। इसे हम सूफी प्रभाव नहीं कह सकते। सूरदास जब लिखते हैं 16 सहस तीर तन एक अथवा एक प्राण द्वय देहरी अथवा गोपी ग्वाल कान दुई नाही ये कहूँ नेकु न न्यारे, तब क्या वे ऐसा सूफी प्रभाव की लपेट में कहते हैं जो खोजो सूफी कवि जिली 1410 ईस्वी की अंग्रेजी में अनुवादित इस पंक्ति को पढ़ते हैं, वी आर द स्पिरिट ऑफ वन दो वी ड्वेल बाय ट्यून्स इन टू बॉडीज। आर ए निकल्सन स्टडीज इन इस्लामिक मिस्टिसिज्म तृतीय टिप्पणी पृष्ठ 80 यूनिवर्सिटी प्रेस कैम्ब्रिज 1921 अथवा रूमी 13वीं शताब्दी के शब्दों में हैप्पी द मोमेंट व्हेन वी आर सीटेड इन द पैलेस दो एंड आई विथ टू फॉर्म्स एंड विथ टू फिगर्स बट विथ वन सोल दो एंड आई। सर थॉमस आर्नल्ड एंड अल्फ्रेड गिलमोई द लीजेसी ऑफ इस्लाम पेज 219 क्लेरिडन प्रेस ऑक्सफोर्ड 1931। निकल्सन ने भी इस उद्धरण को अपने उपर्युक्त ग्रंथ के पृष्ठ 80 की तृतीय टिप्पणी में समाविष्ट किया है। जब वे जीव और ईश्वर की एकता के प्रतिपादक भावों पर ध्यान देते हैं तो झट उन्हें सूर के वाक्यों में सूफी कवियों की छाया दिखाई देने लगती है। ये विद्वान भूल जाते हैं कि सूफी कवियों के इन वाक्यों पर भारतीय अद्वैतवाद का स्पष्ट प्रभाव पड़ा है। इस्लाम का एकेश्वरवाद और भारतीय अद्वैतवाद एक ही नहीं है। इस्लामी एकेश्वरवाद के आधार पर सूफी कवियों द्वारा प्रतिपादित जीवेश्वर एकता की व्याख्या नहीं की जा सकती। उसे तो भारतीय अद्वैतवाद के आधार पर ही समझाया जा सकता है। सूफियों पर पड़े हुए भारतीय प्रभाव को अनेक विद्वानों ने स्वीकार किया है। सूफियों की प्रेम भावना ने अद्वैत से मिलकर आत्मा और परमात्मा के मिलन की जो मधुर मादक लहर प्रवाहित की, उससे सूफी साधना में माधुर्य भाव का संचार हुआ। यह माधुर्य भाव सूफियों की स्वार्थ तंद्रा से निकाल कर आध्यात्मिक चेतना के जागरण में ले गया, जिससे वे अपने प्रभु को सदस्य आमने सामने होकर देखने लगे। हम यह नहीं कहते कि जब दो जातियों का संपर्क होता है तो उनमें परस्पर आदान प्रदान नहीं होता। ऐसा होना अवश्यंभावी है और अन्योन्य प्रभाव के अंतर्गत हम उसका इसी प्रकरण में थोड़ा सा उल्लेख भी कर चुके हैं। पर अपनी परंपरा को जाने हुए बिना जो विजातीय प्रभावों का उल्लेख किया जाता है वह भ्रमात्मक ही नहीं, कभी कभी हानिकारक भी सिद्ध होता है। उससे मन में हीन भावना का उदय होता है जो जातीय पुरुषार्थ पर पानी फेर देती है। स्वाधीन एवं स्वाभिमानी जातियाँ दूसरों के संपर्क में आकर भी कभी अंधानुकरण नहीं करती। यदि वे कुछ लेती भी हैं, तो उसे अपने ढांचे में ढाल लेती हैं। कभी कभी उसका प्रतिक्रियात्मक रूप भी दिखाई देता है। इस्लाम की भातृ भावना को आप स्वामी रामानंद की भक्ति के क्षेत्र में वर्ण विषमता विघटनकारी नीति के रूप में देख सकते हैं, पर वह संपूर्ण रूप में हिंदू कलेवर धारण किए हुए है। गुरु की मान्यता हमारे यहाँ बहुत पहले से चली आती है। सूफियों की पीर पूजा ने संभव है उसे कुछ अधिक बढ़ावा दे दिया हो, पर उसका रूप कभी इस्लामी नहीं बन पाया। इसके विपरीत सूफियों की पीर पूजा का बाया डंबर वाला रूप हिंदुओं की पूजा पद्धति से अवश्य प्रभावित हुआ है। हिंदी काव्य में विरह वर्णन के अंतर्गत जो रक्त मांसादि के उल्लेख की विभत्स प्रणाली कहीं कहीं दिखाई देती है वह अवश्य सूफी संप्रदाय की कवियों से आई है। प्रिया के लिए कैशोर प्रेम वाची जो पुल्लिंग संबोधनों का प्रयोग है वह भी सूफी संप्रदाय की ही देन है। अंत में प्रतिक्रियात्मक प्रभाव की चर्चा करके हम इस प्रकरण को समाप्त करेंगे। हिंदुओं पर मुसलमानों ने अपनी धर्मांधता के कारण जो अत्याचार किए उनका उल्लेख हम इस प्रकरण के प्रारंभ में ही कर चुके हैं। मुसलमानों के सामने हिंदू दीन बने रहे, इसके लिए मुस्लिम बादशाहों ने उनकी अर्जन तथा उत्पादक शक्तियों को ही कुचल डालने का उपक्रम किया था। वे बहुमूल्य आग्रह नहीं रख सकते थे, सोने चांदी के पात्र रखने से वंचित कर दिए गए थे। विलास के समस्त उपकरण हिंदुओं के लिए नहीं मुसलमानों के लिए सुरक्षित थे। हिंदुओं में इसकी प्रतिक्रिया का होना स्वाभाविक था। आचार्य वल्लभ ने हिंदुओं की इस मूक प्रतिक्रिया को वाणी दी, जिसके अनुसार हिंदू अपने लिए नहीं तो अपने इष्ट देव के लिए तो अर्जन कर ही सकते थे। अपनी अर्जित संपत्ति को अपने गृहों में वे भले ही न रख सकें, पर वे उसे अपने इष्ट देव के मंदिर में समर्पित कर सकने के अधिकारी तो थे ही। आचार्य वल्लभ ने वित्तजा तनुजा तथा मानसी सेवा के रूप में जो बालकृष्ण की पूजा का विपुल आडंबरों से युक्त विधि विधान तैयार किया, उसमें इसी प्रतिक्रिया की ध्वनि गूंज रही थी। 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर इष्ट देव को भोग लगाया जाता था। मंगला आरती भैया आदि नित्य सेवा के अवसरों पर प्रचुर धन धान्य का व्यय किया जाता था। केसर की चक्कियां चलती थीं। यह कथन चाहे अपने वाचार्थ में संपूर्ण रूप से सत्य न हो, पर लक्षार्थ में अधिकांश रूप से अपने सत्य के निकट अवश्य था। मुसलमानों के विरुद्ध प्रतिक्रिया की यह भावना अन्य क्षेत्रों में भी सक्रिय बनी रही। भागवत भक्ति की कृष्ण शाखा ने इसे पूजा पक्ष तक ही सीमित रखा, पर राम शाखा ने इसे राजनीतिक क्षेत्र तक फैलाया। कहा कहो छवि आज की भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तव नवै धनुष बाण ले फांस। तुलसी के इस दोहे में प्रतिक्रिया के ये दोनों रूप सुरक्षित हैं। इस प्रतिक्रिया ने हिंदुत्व को सुरक्षित रखने में अनुपम कार्य किया है। हिंदी के भक्तिकालीन साहित्य की विशेषताएं। हिंदी के भक्तिकालीन साहित्य का उदय जिन परिस्थितियों में हुआ उनका उल्लेख हम पीछे कर चुके हैं। स्वर्गीय आचार्य पंडित रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार विजित एवं पद दलित हिंदू जाति किस मुख से वीरता के तराने गाती, वह निसंबल हो उस सर्वशक्तिमान की चरण शरण में पहुंची जो निराश्रितों का आश्रय निर्बलों का बल और अशरण की शरण है। भगवत कृपा से उसे आचार्य भी इस युग में ऐसे प्राप्त हुए जिन्हें भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि और रक्षक कहा जा सकता है, जो स्वयं उस रस रूप प्रभु के उपासक थे और जिनकी वाणी भक्ति रस की अमंद रस वर्षा करती थी। इन आचार्यों में लोक संग्रह की अपूर्व शक्ति थी। इन्होंने अनेक भक्तों साधकों और कवियों को अपने साथ लिया। इनके पूर्व जो आचार्य हुए थे वे संस्कृत के प्रेमी थे, पर इन आचार्यों ने संस्कृत भाषा के दुरूह दुर्ग से निकलकर जनता की वाणी को अपनाया जो सरल एवं सर्वग्राह्य थी। हिंदी का भक्तिकालीन साहित्य विशेष रूप से ब्रज भाषा में लिखा गया है, परंतु प्रेमाख्यान काव्य और तुलसी की कतिपय ग्रंथों की भाषा अवधि है। अवधि को तो नहीं, पर ब्रज भाषा को इस युग के भक्ति काव्य ने भारत व्यापी रूप प्रदान कर दिया। यह पंजाब राजस्थान बुंदेलखंड महाकोशल महाराष्ट्र गुजरात बिहार एवं बंगाल तक समझी जाती थी। इन प्रदेशों के इस युग के काव्यों पर भी भाषा का अनिवार्य प्रभाव पड़ा है। यह युग ब्रज भाषा की साहित्यिक समृद्धि के साथ उसकी व्यापकता का भी युग था। इस युग में भक्ति कांड दो शाखाओं में प्रस्फुटित हुआ, एक शाखा निर्गुण और दूसरी शाखा सगुण कहलाती है। निर्गुण शाखा पुनः दो भागों में विभक्त हो गई, एक भाग ज्ञानाश्रय कवियों का है, दूसरा प्रेमाश्रय कवियों का। सगुण शाखा ने भी कृष्ण भक्ति तथा राम भक्ति दो रूप धारण किए, ऐसी मान्यता कई विद्वानों की है। निर्गुण तथा सगुण शाखाओं में भक्ति कांड का विभाजन हमें सार्थक प्रतीत नहीं होता, दार्शनिक दृष्टि से उसमें यथार्थता नहीं है। प्रभु वस्तुतः निर्गुण और सगुण दोनों ही है। प्राकृत गुणों से विहीन होने के कारण वह निर्गुण और स्वीय गुणों से युक्त होने के कारण सगुण है। ईश्वर के स्वरूप का निरूपण करते हुए हम इस तथ्य की ओर स्पष्ट निर्देश कर चुके हैं। कबीर, नानक, दादू आदि संतों को निर्गुण का उपासक कहा जाता है, परंतु उन्होंने प्रभु के गुणों का कीर्तन जी भर कर किया है। हाँ, वे प्रभु को साकार नहीं निराकार अवश्य मानते हैं। निराकार का अर्थ निर्गुण कभी नहीं होता। अनेक भाववाचक संज्ञाएं निराकार हैं, पर वे सगुण भी हैं। प्रबल पिपासा, भीषण बुभुक्षा, विषम विकृतियाँ, दीर्घ निदाग आदि का प्रयोग और अनुभव साहित्य तथा मानव मन किया ही करता है। निर्गुण निराकार तक भी मानव का प्राथमिक ज्ञान पहुंचा है, पर वह वर्णन का विषय नहीं बन सका। वाणी उसके संबंध में मूक है, वह परा अवस्था है जो साधारणतः पकड़ में नहीं आती। महातत्व के उदय में अव्यक्त और निराकार जब सगुण रूप में प्रतिभासित होने लगते हैं, तभी वे अभिव्यक्ति के विषय बनते हैं और मनोभूमि तक आते आते वे मानव ग्राह्य हो जाते हैं। कबीर आदि संतों ने इस निर्गुण निराकार अवस्था की ओर संकेत अवश्य किया है, पर सामान्यतः वे सगुण निराकार का ही वर्णन करते रहे हैं। प्रभु के साकार रूप का उन्होंने सर्वत्र प्रत्याख्यान किया है। हिंदी के भक्तिकालीन साहित्य की आधारशिला इन्हीं संतों की भावभरित रचनाओं के धरातल पर स्थापित हुई है। उसके भव्य भवन का विशाल एवं आकर्षक रूप ईश्वर के अवतारों के उपासक सूर और तुलसी ने प्रस्तुत किया, जिसमें एक ओर कृष्ण काव्य की कमनीय कांति और दूसरी ओर राम काव्य की अमृत सेंधनी संजीवन प्रदायिनी मनोरम सुषमा विद्यमान है। इस युग का भक्ति काव्य एक ऐसा मंजुल उद्यान है जिसके एक पार्श्व को श्याम रंग मग्ना कलिंदजा सिंचित कर रही है और दूसरे पार्श्व को मर्यादा मार्ग की श्वेतिमा से मंडित राम गंगा। निराकारो पाठक कबीर के शब्द और साथियां तथा जायसी आदि सूफी कवियों के प्रेमाख्यानक काव्यों की भी छटा अति हृदय हारिणी है। इस युग का हिंदी भक्ति काव्य कतिपय संप्रदायों से भी संबंध रखता है। कबीर पंथ, नानक पंथ, हरिदासी, हरिवंशी, पुष्टि मार्ग, गौड़ीय संप्रदाय, रामानंदी आदि कई संप्रदायों ने हमारे साहित्य को गौरव गरिमा से मंडित किया है। ब्रजभाषा प्राय इन सभी संप्रदायों के कवियों की भाव वाहिका थी। वामाचार की निंदा तथा सदाचार की प्रतिष्ठा इन सभी संप्रदायों के साहित्य की विशेषता रही है। सत्संग के महत्व को सभी ने स्वीकार किया है। इन संप्रदायों के लगभग सभी प्रतिष्ठाता उच्च कोटि के साधक थे। इनके काव्यों में श्रृंगारिक वर्णनों को पढ़कर जो आलोचक इन पर कामोत्तेजना का आरोप लगाते हैं, वे अन्याय करते हैं। जो कबीर और गुना हरि बकसती कामे दार न मूल कहकर कामुकता की निंदा करता है, वह जब श्रृंगार पद्धति पर अपनी भक्ति भावना को इन शब्दों में प्रकट करता है, घूंघट को पट खोली ली तो ही पीऊ मिलेंगे, अथवा का जानो वा पीव सो कैसे रहती संग, तो वह श्रृंगारिकता की आड़ में काम वासना को उत्तेजित नहीं करता, आध्यात्मिक भावधारा को प्रकट करता है। इन पंक्तियों को पढ़कर हम उसे कामी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ विषय वासना की गंध भी नहीं है। इसी प्रकार जो भक्त सांसारिक भोगों का परित्याग करके विरक्त भावना से जीवन व्यतीत करता हो, उसका राधा कृष्ण केली क्रीड़ा से पूर्ण रासलीला का वर्णन प्रतीकात्मक ही कहा जाएगा, विषय वासना संबंधित नहीं। जहाँ काम कांचन और कामिनी का निवास हो, वहाँ भगवान कैसे रह सकते हैं। इस युग की स्थितियों में काव्य के साधन और साध्य, श्रृंगार तथा शक्ति, भोग तथा पुरुषार्थ दोनों पक्षों का उद्घाटन हुआ है। काव्य की विभिन्न शैलियों में भी इस युग में रचनाएं हुई। कबीर ने दोहे तथा पदों की शैली को अपनाया, जायसी ने फारसी की मसनवी शैली को दोहे चौपाइयों की पद्धति में ढाला। कबीर की रामायणी भी इस पद्धति को अपनाती है, पर वह कबीर की ही रचना है ऐसा निश्चय के साथ नहीं कहा जा सकता। संभवतः उनके किसी शिष्य ने इसे लिखकर उनके नाम से प्रसिद्ध कर दिया हो। सूर का काव्य प्रमुख रूप से पद शैली में लिखा गया है, यद्यपि उसके बीच बीच में दोहे चौपाई सोरठा गीतका आदि कई अन्य छंदों का प्रयोग भी हुआ है। तुलसी की काव्य शैली विविध रूपा है। उनका रामचरितमानस दोहे चौपाई की पद्धति पर, कृष्ण गीतावली गीतावली तथा विनय पत्रिका पद शैली में, कवितावली कवित्त सवैयों में, दोहावली दोहों में, जानकी मंगल तथा पार्वती मंगल अरुण अर्थात मंगल और हरि गीतिका छंदों में, रामलला नहछू सोहर छंद में तथा बरवय रामायण बरवय छंद में लिखे गए हैं। इस युग में गीति प्रबंध मुक्तक आदि कई काव्य विधाओं की रचनाएं हुई। विषयों की दृष्टि से यद्यपि भक्ति कांड ही इस युग की कृतियों का प्रधान विषय है, फिर भी इसे लक्ष्य करके कृष्ण चरित, राम चरित तथा इनसे संबद्ध अनेक पौराणिक आख्यान काव्य लोक प्रचलित घरेलू कहानियों में कल्पना का मिश्रण करके मधुरिमा मंडित अनेक प्रेम काव्यों की रचना की है। इन प्रेम काव्यों के बीच बीच में अनेक भारतीय, पारसी तथा अरब की पौराणिक एवं ऐतिहासिक गाथाएं भी आ गई हैं। कवि अपनी कृतियों में कुरीतियों के निवारण, बाह्याडम्बर पूर्ण कर्मकांड एवं पूजा विधानों के खंडन, अंधविश्वासों के निराकरण तथा विनती संवादनी प्रवृत्तियों के प्रत्याख्यान द्वारा भारत की क्षीण प्राय समन्वयवादनी प्रवृत्ति के स्थापन और विभिन्न विचार प्रणालियों में सामंजस्य लाने का प्रयत्न करते रहे। तुलसी ने प्राचीन शास्त्रीय मर्यादा का अवलंबन लेकर समन्वयवाद की प्रतिष्ठा की। इस युग की भक्ति संबंधी जो विशिष्ट बात हमारे सामने आई है वह है भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला और धाम का चित्रण। सूर और तुलसी जैसे ईश्वर के अवतारों के उपासक कवियों की रचनाओं में तो यह चित्रण मिलता ही है। कबीर और जैसी जैसे निराकारों उपासकों तक की कृतियों में यह प्रवेश पा गया है। जैसा हम पीछे लिख चुके हैं, अवतारवाद की भावना ने वैष्णव धर्म के अभिनव उत्थान के साथ इस देश में अपनी गहरी जड़ें जमा ली थी। उसके पश्चात जो संप्रदाय यहाँ प्रवर्तित हुए उनमें से अनेक ने अवतारवाद का खंडन भी किया, पर बाद में इसकी उद्दान लहरों में स्वयं डूबने उतराने लगी। कबीर पंथियों में कबीर, सिख संप्रदाय में नानक, इसी प्रकार अपने अपने संप्रदायों में दादू, रैदास, शिव नारायण आदि ईश्वर के अवतार माने जाते हैं। भक्ति संबंधी इस विशेषता का वर्णन कवियों के भक्ति संबंधी सिद्धांत विवरण के अंतर्गत किया जाएगा। हिंदी का यह भक्तिकार उसका स्वर्ण युग सच्चे अर्थों में कहा जाता है। इस युग में धर्म, दर्शन, ललित कला, लोक जीवन आदि सभी परिपुष्ट हुए। हरि भक्ति का क्षेत्र सबके लिए उन्मुक्त कर दिया गया। इस मान्यता ने उच्च नीच के वैषम्य भाव को मिटाकर समानता की स्थापना की, जिससे हीन ग्रंथियां दूर हुई और मानवता का विकास हुआ। भाव और कला दोनों पक्षों में इस युग के कवियों ने जिस काव्यश्री का विस्तार किया उसकी तुलना अन्य किसी भी काल के काव्य से नहीं की जा सकती। कबीर, जैसी, सूर और तुलसी की कोटि के कवि देश में फिर उत्पन्न नहीं हुए। विश्व कवियों में भी इनका स्थान निस्संदेह बहुत ऊंचा है, ऐसा इस देश के ही नहीं पाश्चात्य आलोचकों का भी मत है। मुसलमानों में दीन और दुनिया की बादशाहत खलीफाओं में केंद्रित रही है। ईरान और भारत में आकर या उलेमाओं और सुल्तानों में विभक्त अवश्य हो गई, फिर भी सुल्तानों का ही प्रभुत्व विशेष रूप से बना रहा। भारत ने प्रारंभ से ही राजनीति और धर्म को पृथक पृथक रखा था। क्षत्रिय राज्य करता था तो ब्राह्मण धर्म और दर्शन का प्रवक्ता था। भारत में धर्म, दर्शन, राजनीति से पृथक रहकर सुरक्षित रहे। हिंदी के भक्तिकालीन साहित्य के प्रतिष्ठाता कुछ ऐसे आचार्य थे जिन्होंने अपनी संस्कृत वाणी में तो इनकी अभिनव व्याख्या की ही थी, लोकवाणी द्वारा भी उन्होंने इन दोनों को जनता तक पहुँचाया। इसमें आचार्य तथा उनके शिष्य दोनों ने भाग लिया। भक्ति का आंदोलन जो जनता का आंदोलन बन गया उसका एक कारण यह भी था, लोक जीवन को इस भक्ति ने पोषण दिया। ललित कलाओं में काव्य के साथ संगीत, स्थापत्य तथा चित्रकलाएं भी समृद्ध नहीं। स्वामी हरिदास, रामदास, तानसेन आदि संगीतज्ञ इसी युग की विभूतियाँ हैं। स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ताजमहल है। चित्रकला ने भी राधा कृष्ण भक्ति का आश्रय पाकर उन्नति की। हिंदू ही नहीं मुसलमान बादशाहों से भी इसे प्रोत्साहन मिला। श्री नंदलाल चमनलाल मेहता ने अपने ग्रंथ स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग में प्रकृति, रासलीला, मंडल, देव, नृत्य, वाद्य प्रभृति के चित्रों का मनोज्ञ विवरण प्रस्तुत किया है। इन चित्रों में अनित्य नित्य के साथ, शांत अनंत के साथ, प्रकृति पुरुष अथवा माया ब्रह्म के साथ जैसे एक हो जाने की चेष्टा में लीन है। प्रतिनिधि कवि स्वामी रामानंद के प्रसिद्ध 12 शिष्यों में कबीर और रैदास के नाम पृथक पंथ प्रतिष्ठाता के रूप में लिए जाते हैं। अन्य शिष्यों में श्री अनंतानंद जी के शिष्य कृष्णदास परिहारी अधिक प्रख्यात हुए, जिन्होंने जयपुर राज्य के अंतर्गत गलता में रामानंदी वैष्णवों की एक गद्दी स्थापित की जो आज तक चली आती है। कृष्णदास परिहारी जी के भी कई शिष्य हुए जिनमें अग्रदास और कीलदास प्रमुख है। अग्रदास के शिष्य नाभादास थे जिन्होंने भक्तमाल की रचना की। इन सभी संतों ने उन दिनों की लोकवाणी हिंदी में अनेक ग्रंथों का निर्माण किया है जिनमें भक्ति भावना तथा योग परक क्रियाओं का उल्लेख है। स्वयं रामानंद जी के नाम से लिखे हुए कुछ ग्रंथ मिले हैं जैसे ज्ञान लीला, ज्ञान तिलक, राम रक्षा आदि। इनमें भी हठ योग की कतिपय क्रियाएं तथा खेचरी मुद्रा के रूप में अमी रस का पान, नाड़ी चक्र आदि वर्णित हुए हैं। योग मार्ग गुरु गोरखनाथ से पुष्टि पाकर उन दिनों समग्र देश में सम्मानित था। सूफी कवि भी इससे प्रभावित हुए थे। वैष्णव संप्रदाय स्वयं योग और सांख्य के सम्मिलन से बना है, अतः अपनी प्राचीन प्रवृत्ति को बहुत दिनों तक अपने साथ रखता रहा। स्वामी रामानंद से दीक्षा लेकर कबीर ने भी प्रारंभ में योग साधना की थी, परंतु बाद में उन्होंने इसे छोड़ दिया और सहज मार्ग के प्रशंसक बन गए। सूर और तुलसी ने भी योग मार्ग का अति तीक्ष्ण शब्दों में प्रत्याख्यान किया है। इसका कारण एक तो भक्ति मार्ग की प्रतिष्ठा करना था, पर एक अन्य प्रमुख कारण योगियों का चमत्कारक सिद्धियों में पड़ जाना और अंत संत क्रियाओं द्वारा लोग को भयभीत करके धोखा देना भी था। यह भी कहा जाता है कि रामानंदी संप्रदाय में योग मार्ग को लेकर एक तपसी नाम की पृथक शाखा स्थापित हो गई, जिसके अनुयायियों ने योग परक ग्रंथ लिखकर स्वामी रामानंद के नाम से प्रख्यात कर दिए। इसमें संदेह नहीं कि स्वामी रामानंद का व्यक्तित्व एक और निराकार राम के उपासक कबीर पंथ का विस्तार करता है, तो दूसरी ओर यह अवतारी दार्शनिक राम के पावन चरित्र की आराधना के मूल में भी विद्यमान है। एक ओर उनके शिष्यों में नापित चर्मकार मुसलमान जुलाहे आदि आते हैं, तो दूसरी ओर अग्रजन्मा ब्राह्मण तथा शक्ति के धनी क्षत्रिय आदि भी। इस व्यापक प्रभाव के कारण स्वामी रामानंद उस युग की चिंतन धारा के मूल प्रेरक समझे जाते हैं। निराकारों उपासना के प्रतिनिधि कवि कबीर हैं। वो स्वामी तुलसीदास साकार अवतारी राम के आराधक कवियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की समता करने वाला इस युग में अन्य कोई भी सूफी कवि नहीं हुआ। जायसी ने इस देश की प्राय सभी बहुमूल्य गरिमाओं को आत्मसात करने की चेष्टा की है। क्षत्रियों की आन, योगियों की प्रतिष्ठा, संतों का सम्मान, सती का गौरव आदि समस्त उदात्त मान्यताएं उनकी काव्य में जगमगा रही हैं। योग की क्रियाएं तथा सिद्धियां, रसायनी गुटका, योगियों का परिधान, प्रेम योग, व्रत एवं तप का प्रभाव और अस्थि अस्थि जैसे पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग जायसी के पद्मावत काव्य में रिक्त के समान सुरक्षित हैं। जायसी कवि हैं, योगी हैं और भक्त हैं। अपने काव्य ग्रंथ पद्मावत में उन्होंने स्थान स्थान पर अपने प्रियतम प्रभु के प्रति प्रेम पूर्ण भक्ति के उद्गार प्रकट किए हैं। अतः जायसी को हम निर्विवाद रूप से प्रेमाख्यानक काव्यों का प्रतिनिधि कवि कह सकते हैं। कृष्ण काव्य के प्रतिनिधि कवि कुल तिलक महात्मा सूरदास हैं। अष्टछाप के अन्य कवि भी अपनी प्रांजल वाणी में हरिलीला का गायन करते हैं, पर जिस प्रभु विष्णु शैली में सूर ने उस परम को अवम बनाकर उपस्थित किया है, जिन व्यंजनों का आश्रय लेकर उसने इस लोक को उस लोक से मिलाया है और जिन वात्सल्य तथा श्रृंगार के उभय पक्षों का अपनी बाहर से बंद पर अंदर से खुली हुई आंखों द्वारा जैसा लोक विमोहक उद्घाटन किया है, उन सबका वैसा गुरु गंभीर रूप अन्य कवियों की रचनाओं में देखने को नहीं मिलता। कृष्ण काव्य के गायक पुष्टि मार्ग में तो हुए ही, हरिदासी तथा हरिवंशी संप्रदायों में भी हुए हैं। रस की जो वर्षा, मधुरिमा की जो रिमझिम, इन श्यामानुराग भक्त हृदयों की उपत्यकाओं में हुई और वहाँ से जन मन की भूमि तक पहुँची, उससे यह समग्र भारत वसुंधरा रस सिक्त हो गई। हरिदासी संप्रदाय निम्बार्क मत का अनुयायी है और हरिवंशी संप्रदाय पर महाप्रभु चैतन्य का प्रभाव पड़ा है। आचार्य निम्बार्क ने ही सर्वप्रथम राधा कृष्ण की भावमयी भक्ति का प्रचार किया था। महाप्रभु चैतन्य तथा उसके अनुयायियों ने भी वृंदावन के प्राचीन स्थानों की खोज करके, जो कृष्ण चरित्र से संबंधित थे, हरि भक्ति के साथ राधा भक्ति को प्रोत्साहित किया। सूर से हमें भक्ति के दोनों प्रकार मिल जाते हैं। उन्होंने अपने एक पद में हरिदासी तथा हरिवंशी भक्तों के साथ एक हो जाने की कामना भी प्रकट की है। अतः हम आगामी अध्यायों में इन्हीं चार कवियों को इस युग के प्रतिनिधि कवि मानकर वैष्णव भक्ति के पंचम उत्थान की हरिलीला गर्भित भक्ति भावना का अध्ययन करेंगे।